नहीं प्रभु जी, कोई सिस्टम नहीं।
दैट्स फाइन, ओके। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हम ईशोपनिषद में ये सीख रहे थे कि इस ग्रंथ का जो मूल उद्देश्य है वो है भगवान को सभी वस्तुओं का, सभी चीजों का, सभी अस्तित्व का एकमात्र स्वामी के रूप में उनको समझना, उनको स्वीकार करना। विशेष करके इंट्रोडक्शन में हमने जो सुना वो था इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक नॉलेज, अर्थात वैदिक ज्ञान की महत्व, वैदिक ज्ञान का महत्व। फिर इन्वोकेशन, जो कि आवाहन कहा जाता है, इन्वोकेशन से लेकर के मंत्र 1, 2, 3, ये चार जो श्लोकास है, तीन मंत्र और इन्वोकेशन, ये भगवान जीवात्मा और भगवान की प्रकृति, इन तीनों के बीच का जो संबंध है, पूर्ण रूप से जो संबंध है, उसका चर्चा होता है इस तीन चार श्लोकों में। इसकी चर्चा आपने भगवद गीता में भी की थी, भगवद गीता में इस विषय वस्तु का चर्चा हुआ था शायद, अगर आप इन चीजों को स्मरण है, जीव प्रकृति और भगवान, इन तीनों के बीच में आपसे संबंध। फिर मंत्र 4 से लेके 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 5 मंत्र, जिसमें जो थीम है सिखाने का, समझने का, वो है कि केवल महाभागवत भक्तों की सहायता से ही अचिंत्य भगवान जो है उनको समझा जा सकता है। भगवान ऐसे आप खुद से नहीं समझाएंगे, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा से ही उनको समझ पाएंगे। फिर आगे के जो 3 मंत्र है, 9, 10, 11, वो ज्ञान और अज्ञान के विकास की तुलना है, कंपेयरिंग द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज एंड साइंस, ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या के बीच का जो भेद है उसका चर्चा होता है उसमें। फिर नेक्स्ट 12, 13, 14 तीन मंत्र ऐसे हैं जो ये इस विषय में चर्चा करते हैं, जो भगवान परमेश्वर अर्थात जो परफेक्ट है, एब्सोल्यूट जो है, उनकी पूजा से जो संबंधित, अर्थात ब्रह्म की पूजा और परमेश्वर की पूजा के विषय में, सॉरी भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा के विषय में, उन दोनों के बीच में क्या भेद है, उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। So, it is comparing worship of the absolute to the worship of the relative. और अंत में जो 3, 4 श्लोक है अंत के, वो है भगवान के दिव्य स्वरूप के प्रकट करने के लिए प्रार्थना, भगवान के दिव्य स्वरूप को प्रकट करने की प्रार्थना। So, this is the overview total जो हमारे ईशोपनिषद का सब्जेक्ट मैटर होगा। वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी, एक मंत्र हमने चर्चा किया हुआ है। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन इन द ओवरव्यू?
प्रभु जी, लास्ट में हम प्रेयर्स फॉर भगवान टू रिवील हिमसेल्फ, व्हाट इज द लास्ट
वन? प्रेयर्स फॉर रिवीलेशन ऑफ द लॉर्ड स्पिरिचुअल फॉर्म।
ठीक है,
सब
हाँ साउंड आ रहा है प्रभु जी
Now it is better.
Yes, a little bit better, bro. Yes. But अब फिर से हो गया.
I'm doing it right. Here is our first problem. Pan after.
Starting में नहीं था. बाद में शुरू.
अच्छा बस. I think this will be better now. Is this better?
Now it
yes, Robin, now it is better.
Okay. Okay, so more questions on the overview or we can continue further? So, मंत्र अभी जो हमने लिया है उसमें मंत्र एक जो था उसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था ईशावास्य मंत्र भगवान सब कुछ के स्वामी है भगवान स्वयं परमेश्वर और मंत्र दो जो है वो इस ईशावास्य जो प्रिंसिपल है ये ईशावास्य प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन में रखा जाता है जब उसका एप्लीकेशन में रखते हैं तो उसका क्या परिणाम प्राप्त होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ऑनवर्ड्स तो पहले मंत्र के साथ का कनेक्शन अगर आप इसको कनेक्शन करना चाहते हो पहला मंत्र था ईशावास्य दूसरा मंत्र जो है उसको कनेक्शन ऐसा है कि ये गॉड सेंटर्ड कॉन्शियसनेस जो होता है ईशावास्य विचारधारा या भगवान को मध्य में रखने वाला जो चेतना है उसका आवश्यकता और उसका परिणाम उसके अंदर अंतर्गत कार्य करने में क्या परिणाम प्राप्त होगा और क्या इसकी आवश्यकता है अगर आप सब भक्त को अगर आप अध्याय भगवद गीता के पहले जो 6 अध्याय है उस 6 अध्यायों का जो सार तत्व था वो कर्म सेक्शन वाला एरिया माना जाता है कर्म सेक्शन राइट तो कौन सा 3 प्रकार कर्म का हमने चर्चा किया था भगवद गीता में आप बता सकते हैं कौन से 3 प्रकार की कर्म
हाँ, हाँ सर
ठीक है तो फिर बताइए
सकाम कर्म निष्काम अरे सकाम कर्म यू आर टॉकिंग अबाउट सकाम कर्म या अकर्म सुकर्म और विकर्म की बात कर रहे हैं
या देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ कर्म
या
तो व्हाट आर दोस
कर्म कर्म विकर्म
अकर्म कर्म विकर्म
यस
कर्म एज पर स्क्रिप्चर्स विकर्म इज विदाउट फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स एंड अकर्म व्हिच डजंट हैव एनी एक्शन और रिएक्शन
यस कर्म जो है जिसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी माना जाता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी का अर्थ होता है अपना जो निजी कर्तव्य सकर्म सकाम कर्म या नियत कर्तव्य तो उनकी चर्चा हमने ऑलरेडी की थी और जिसका पालन करने से ग्रेजुअल रियलाइजेशन होता है एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं उसके अंदर और फिर धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि हम इस प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं कर्म ये झंझट से 3 प्रकार कर्म के धीरे धीरे हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं कि जिसमें कर्म का बंध नहीं रखता दूसरा है अकर्म अकर्म का क्या अर्थ होता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त कराता है। और उसको कैटेगराइज किया जाए तो वो ईसावास्य कैटेगरी में आता है, अर्थात गॉड सेंटर्ड कर्म, इंटेलिजेंट कर्म, अकर्म। और विकर्म को अगर हम ध्यान में देखें तो वो अनऑथराइज्ड कर्म है। अनऑथराइज का अर्थ होता है कि शास्त्र जिसका प्रमाण नहीं देते, शास्त्र मना करते हैं ऐसे कर्म को लेकर के, जिसको पापमय प्रवृत्तियां बोलते, पापमय कर्म। और उसका परिणाम यह आता है कि निम्न योनियों में पतन होता है। इसके इस कैटेगरी की कर्म की चर्चा सेकंड मंत्र में हम करेंगे, जिसको आत्महना आत्महा मंत्र माना जाता है। सो इन अदर वर्ड्स, अकर्म को भगवद गीता में अधिकतर केस में निष्काम कर्म योग, इन द फर्स्ट पार्ट निष्काम कर्म योग के संबंधित उसको बताया गया है। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट निष्काम कर्म योग इन द पास्ट, राइट। कर्म बंधन ये हमारी समस्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो हमारी समस्या है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मनुष्य जीवन में भगवान को मध्य में रखते हुए कर्म किया जाए, निष्काम कर्म, जो फल की इच्छा से मुक्त होकर के। सो ऐसे जो कर्म है दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म, एंड दैट लिबरेट्स वन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो उस समय फिर जो प्रकृति के प्रकृति का जो मोड्स है, सॉरी प्रकृति के जो मोड्स है वो हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो दीज आर थिंग्स व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस इन थर्ड चैप्टर टेक्स्ट 10-11 फर्दर। इसका संक्षिप्त में अगर हम आपको बताए तो भगवान क्या कहते हैं, पुरो वाचो प्रजापति, व्हाट इज दैट श्लोक, तह यज्ञ Anyway, in the beginning of creation, the Lord of all creatures sent four generations of man and demigods. भगवान ने शुरुआत में, सृजन की शुरुआत में क्या किया था? उन्होंने मनुष्य को और देवताओं को विष्णु के यज्ञ के साथ भेजा था, ताकि ये लोग यज्ञ करके एक दूसरे को संतुष्ट कर सके, सुखी रख सके। अगर कोई इस तरह से यज्ञ का पालन करेगा, दोनों ही सब लोग, देवता और मनुष्य सब लोग, तो वो अपने अपने निजी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से दोनों के बीच में कोऑपरेशन रहेगा, देवताओं और मनुष्य के बीच में। दिस इज मोर और लेस इट इज अ सकाम कर्म। बाद में भगवान कहते हैं कि जो इस यज्ञ की साइकिल को फॉलो नहीं करता है वो पापमय जीवन को जीता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीता है, एंड उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन भगवद गीता। तो वेदों का जो डायरेक्शन है, वेदों का जो ज्ञान है, वो हमारी कलुषित जो इच्छाएं है उस इच्छाओं को पूरी करने का अवसर देते हैं, और साथ साथ में भगवत धाम जाने का भी हमें अवसर देते हैं। दिस इज सच अ वंडरफुल ऑप्शन। अगर आप इसको, इस ऑप्शन को निकाल लोगे तो एंट्री गेट ही बंद हो जाता है, कोई आएगा ही नहीं भगवान की स्वीकार सेवा स्वीकार करने के लिए। लेकिन ये ऑप्शन के माध्यम से पीपल कैन कम बैक टू गॉड Godhead. तो जैसे इन शॉर्ट, अगर आपको योगा लेटर देखोगे तो जो जीवन की एकदम निम्न अवस्था में होते हैं, लोअर स्टेजेस में होते हैं, वो लोग भक्ति को अचानक से स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये लोग अपने कर्मों को थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं इस वैदिक शास्त्रों के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे भगवान की सत्ता को समझ पाएंगे, स्वीकार पाएंगे। So akarma या निष्काम कर्म is the main purpose or the solution of the entire. इसका आपको वर्णन आपको मिलता है भगवद गीता के 34 अध्याय में 24 श्लोक में भी इसका वर्णन आता है. इस बुक में प्रभुपाद कहते हैं फैक्चुअली नो वन हैज टू डू एनीथिंग मोर देन रेंडर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड. प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान किसी को भी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. भगवान की भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली, जैसे भगवद गीता में क्या कहा गया है, यज्ञ करोगे तो देवता आप पर प्रसन्न होंगे, आपको आपकी जो सुविधाएं है प्रकाश, आपका हवा, अन्न, ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोवाइड. बट व्हेन यू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी या यज्ञ पुरुष स्वयं भगवान विष्णु, अगर आप उनकी सेवा करते हो ऑटोमेटिकली यू गेट एवरीथिंग. इसलिए भगवान की सत्ता को समझना कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दिस इज ईसावास्य प्रिंसिपल, और यही पॉजिटिव नॉलेज है. सो इस श्लोक में फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि ईशोपनिषद हमें ये सुझाव देते हैं कि हम हमारी जो शक्तियां हैं वो इस तरह से उपयोग करें, हमारे कर्म इस तरह से उपयोग करें जो ईशावास्य प्रिंसिपल को फॉलो करता हो. तो अगर हजारों साल अगर हम जीना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन डू दैट, बट विद द इंटेलिजेंस ऑफ ईशावास्य. देखो अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म, कर्म तो बांधेंगे ही. हमारी भौतिक इच्छा को पूरी करने का कोई भी प्रयास, चाहे अच्छा हो बुरा हो, पुण्य हो पाप हो, कुछ भी हो, वो हमें बंधन करता होते ही है. और इसलिए इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए. इसकी चर्चा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट इट इज टू रिकॉल रिमेम्बर इट अगेन. प्रभुपाद एक जगह कहते हैं इस तात्पर्य में, इसके बुक में, इस बुक इस मंत्र में, कि गृहस्थी बनना, समाज सोशलिस्ट बनना, कम्युनिस्ट बनना, नेशनलिस्ट बनना, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई राष्ट्रवादी होता है, कोई साम्यवादी होता है, कोई सेवा करने वाला होता है, कोई समाज सेवक होता है, बहुत सारी चीज होती है, नेता हो सकता है कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सारा जीवन गॉड सेंटर्ड कंसेप्शन से होना चाहिए. जैसे हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार. कृष्ण संसार करी, कृष्ण को मध्य में रखो. हमारा गॉड सेंटर्ड लाइफ होना चाहिए. जो भी करते हैं खाते पीते दैट इज निष्काम कर्म योग. इसकी हमने ऑलरेडी चर्चा की थी, समर्पणम. सारा कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए. तो इन दिस वे ऐसा कार्य चाहे वो थोड़ा ही किया हो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है. वो भी चीज आपको भगवद गीता में ये चीज प्राप्त होती है. कौन सा श्लोक है? आप सब भक्तों का जो सेकंड मॉड्यूल का एग्जाम होगा उसके बाद फिर अगर हम आपको कोई भी श्लोक कहीं से भी पूछेंगे तो शायद यू वुड बी बेटर टू टेल, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे भक्त ये भगवद गीता आपने सिस्टमेटिकली पढ़ा, लेकिन इसको बार बार पढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने कोर्स किया अभी इससे ज्यादा कुछ जानने का बचा ही नहीं है. जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना ये ज्ञान हमारे मन में ताजा रहेगा. जैसे अभी जैसे मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन कि भगवद गीता में ऐसा क्या बताया है कि अगर आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे, कृष्ण निष्काम कर्म योग या भगवान के अर्पण किया हुआ, उसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसा कोई है?
241
श्लोक में श्लोक आई वॉन्ट टू नो श्लोक.
प्रभु जी नेहा विक्रम नाशोस्ति स्वल्प प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः. नहीं, हाँ
तो प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते का अर्थ होता है इसका इसमें कभी नुकसान नहीं होता है, यू विल नेवर हैव एनी लॉस, नो लॉस, कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं, कोई प्रकार का डिमिन्यूशन नहीं, कुछ नहीं। यहां अभी कर्म आश्वस्ती प्रत्यवाय न देते, और ऐसा कर्म आपको महान भय से उद्धार कर देता है। तो दिस वॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेकेंड श्लोका, सेकेंड मंत्र। सो एनी क्वेश्चन, आई गो टू थर्ड मंत्र। ओके, तो अभी मंत्र दो में क्या हमने सीखा था कि ये ईसावास्य प्रिंसिपल जो है उसके आधार, उसको एप्लीकेशन कैसे किया जाए, एंड एट द सेम टाइम मंत्र तीन में ये चीज बताई गई है कि जो मंत्र दो को फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होगा। मंत्र तीन जो ईसावास्य प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। सो मंत्र somebody can open this book, I'm sorry, मैं मंत्र टू का ट्रांसलेशन, श्लोक का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ पाया।
Should we read mantra 2 translation or mantra 3?
Both.
Okay. मंत्र टू का ट्रांसलेशन है, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दिस वॉज मंत्र टू।
मंत्र थ्री,
या आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है।
यस,
तात्पर्य नहीं पढ़ना है ना?
नो।
ओके,
तो दो प्रकार की लोगों की चर्चा तो हमने भगवद गीता में भी की थी, हियर आल्सो वी आर गिविंग टू टाइप ऑफ पीपल, एक होता है गॉडली और एक होता है डिमोनिक। लेकिन जो मंत्र दो में जो चर्चा की थी, दे आर गॉडली पीपल, और मंत्र तीन में जो है दे आर डिमोनिक पीपल। डिमोनिक पीपल का क्या प्रॉब्लम होता है कि दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, उन लोग को आसुरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको मानव जीवन की जिम्मेदारियों का भान नहीं है। कभी कभी उनको असुर बताया जाता है, कभी आत्मा कहा जाता है, कभी आत्मसंभवित कहा जाता है। आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा, उनका आत्मा या उनकी जिम्मेदारियां वो उसका हनन करते हैं। या एक होता है आत्महत्या, जो शरीर का नाश होता है, और दूसरा आत्महत्या होता है कि जो आत्मा का नाश होता है। तो इसलिए
का मतलब हनन, मतलब
हनन का अर्थ होता है किल, टू किल समबडी इज अ हनन।
ओके,
हा हा उपयोग हुआ है आत्मा, हा हा का अर्थ होता है टू किल। तो आत्मा का मृत्यु कैसे हो सकता है? आत्मा का मृत्यु जब होता है जब वो धर्म का पालन करना बंद कर देता है, या उसका प्रयास तक नहीं करता, या फिर अज्ञानता से मोहित हो जाता है, या फिर मायाग्रस्त हो जाता है। सो देयर इज आत्महना, ठीक है, आत्महनोजना। तो जो देवी संपदा के जो लोग होते हैं उनका फायदा ये है कि एटलीस्ट वो लोग वापिस आ सकते हैं फिर से। लेकिन असुरी जो लोग होते हैं उन लोग को अलग अलग प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, और यहां पर भी उनको अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दे आर डिमोनिक, सो दे हैव टू फेस ऑल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड यू नो further hellish planets and all. So in this way, un log ka hanan hota hai. This is a very famous sloka in Srimad Bhagavatam, 11th canto, text number 20, chapter 20, text number 17. Ye bada famous sloka, aap sab jante hi honge. Nrideha madhyam sulabham sudurlabham plavam sukalpam gurukarnadharam mayanukulena nabasvicheritam puman bhavam puman bhavabdhim natares atmaha. तो भागवतम में भी इस आत्महा शब्द का उपयोग हुआ है. नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम. ये मनुष्य शरीर जो है ये बहुत ही दुर्लभ है और वो एक ऐसी नौका है. नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम. ये परफेक्ट बोट है और इसके जो कैप्टन है वो है आध्यात्मिक गुरु, गुरु कर्णधार है असत कैप्टन. हमारी जो मनुष्य शरीर रूपी जो नौका है उसके कप्तान है हमारे आध्यात्मिक गुरु. मयानुकूलेन नभस्वतेरितम. और मयानुकूल नभस्वतेरितम का अर्थ क्या है कि भगवान की जो वाणी है, शास्त्र का वाणी है, वो फेवरेबल विंड्स है. जैसे हवा से आजकल मोटर से नौका चलती है, लेकिन पहले हवा जो आता था उसके आधार से नौका चलती है. तो अनुकूल पवन है वेद शास्त्रों की आज्ञा है. और ये वेद शास्त्र की आज्ञा अनुकूल पवन गुरु कर्णधार अर्थात कैप्टन और मनुष्य शरीर परफेक्ट बोट, इसका प्रॉपर उपयोग होना चाहिए. लेकिन अगर वो ऐसा अगर इसका प्रॉपर उपयोग किया जाता है तो पुमान भवाब्धिम उसको तैर या उसको मनुष्य उसको तैर सकता है, इस मटेरियल वर्ल्ड को तैर सकता है. लेकिन अगर कोई इसका उपयोग नहीं करता है न तरेत स आत्महा, अगर उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उसको आध्यात्मिक गुरु भी प्राप्त हुआ, उसको वेद शास्त्र का पवन अनुकूल पवन प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी अगर वो जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को उद्धार नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को सुसाइडर माना जाता है. आत्महा ऐसा व्यक्ति अननेसेसरी अपने आत्मा का नाश करता है, किलिंग हिज ओन सेल्फ. मनुष्य हरि हरि विफल जन्म में विफल जन्म पाए, विफल जवान गवाए. रतन दास साहब कहते हैं हरि हरि विफले जन्म गुमाए. मेरा जन्म जो है वो गवाया मैंने. कैसे? मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया. मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ लेकिन मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया. मैंने वृंदावन ब्रज भक्ति उसके लिए मैंने अपने आप को तैयारी नहीं किया. मैंने भौतिक इच्छाओं से दूर होने का प्रयास नहीं किया. मुझे सब प्रकार का मौका प्राप्त हुआ लेकिन मुझे किसी प्रकार का आध्यात्मिक आकर्षण ही नहीं हुआ किसी चीज के प्रति. जानिया सुनिया विष खाए, मैं जानबूझ करके मैंने जहर खाया. जानिया सुनिया विष. फिर लोचन दास ठाकुर कहते हैं हेनो अवतारे जार रति ना जन्मे लो. ऐसे जो नित्यानंद प्रभु जो सबसे दयालु अवतार है, सब पर कृपा करने वाले हैं और अधम से अधम लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं, केवल हमें उनके आदेशों का पालन करना है. तो है ने अवतार जारे रति ना जन, उनके प्रति थोड़ा भी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ. लोचन बोले सही पापी, सॉरी लोचन बोल अवतारे जारे रति ना जन मिलो, सही पापी आत्मघाती हो लो. लोचन बोले सही पापी आत्मघाती हो लो. तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा पापी जो होता है वो आत्मघाती हो लो. आत्मघाती हो लो का अर्थ क्या होता है कि वो आत्महत्या करने वाला आदमी माना जाता है. तो इसलिए ये फैसिलिटी प्राप्त होती है भगवान के भक्तों को कि अगर वो थोड़ा भी आत्मा हक के अगेंस्ट में अर्थात ईसावास्य प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला है, अगर वो ईसावास्य प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो अगर वो गिर भी जाएगा फिर भी उसको बचा लिया जाएगा, है ना। वो आप छठे अध्याय में पढ़ा था ना आपने कि पूर्वाभ्यास न तेने व रियते यभ्यासो ही अवशोप्य, राइट। अगर उनका पतन भी हो जाता है उनको सुचिनाम श्रीमताम वहां पर उनको भेजा जाएगा, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में जो भगवान की शरणागत नहीं है उनको तो फेंका जाएगा। तो लाइक दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वन इज नॉट सपोज टू बी आत्मा, अन्यथा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ क्या है 84 लाख प्रकार की योनियों में गिरना। तो ईशोपनिषद जो है वो हमें अज्ञानता के जो डार्केस्ट रीजन है या सबसे अंधकारमय जो स्थान है उसके अंदर गिरने से बचाना चाहते हैं, चेतावनी देता है। Prabhupada has already said on this in one of the lectures in New Vrindavan that if anyone does not know the value of life, then it is misused. In the Shastra it is called Atmaha. So, we are drinking the poison. क्या है वो poison वाला song है? विषय रूपी जो विषम विष सतत खाया हमने, लेकिन गौर कीर्तन रसे मग्न न हो ना, किंतु दुर्भाग्य से चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन रस में मैं मग्न नहीं हुआ, उसके सामने उसको मैंने ग्रहण नहीं किया। गौरा पहो ना बजिया मैंने गौरा प्रभु का मैंने भजन नहीं किया। तो दिस इज द मूड बिहाइंड द डिवोटीज आर प्रेइंग। एक्सक्यूज मी माय थ्रोट इज बैड टुडे। सो मंत्र 4, इज एनी क्वेश्चन?
हरे कृष्ण प्रभु जी, जो व्यक्ति यह आपने अभी बताया आत्महत्या मतलब सोल की हत्या जिस तरह से करता है, ही इज नॉट फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स और गोइंग अगेंस्ट इट, तो उसको तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही वो ये कभी ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा ना ही ये पढ़ेगा, तो उसको एज सच वो इग्नोरेंट भी है और एज सच ही इज नॉट इंटेंशनली डूइंग इट, और तो उसका प्रभाव भी जो भी होगा वो ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। तो मतलब व्हाट इज द पॉइंट, लाइक इट इज गुड कि वी शुड नो दिस, बट देन द पर्सन हु इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड और मे बी नॉट एट ऑल बिलीविंग इन द नेक्स्ट लाइफ और समथिंग, फॉर हिम ही विल बी किलिंग एवरी लाइफ ऑफ हिज, आई मीन ही विल बी वेस्टिंग एवरी लाइफ ऑफ हिज इन विच एवर फॉर्म ही गेट्स।
So for them, this yoga ladder has been designed. Those who are lower than animalistic life or who are on the platform of animalistic, जो पशुतुल्य जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको वेद शास्त्र की भाषा नहीं समझ पाते वो लोग, इसलिए उनको वेद शास्त्र धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनको भौतिक प्रलोभनों का गाजर लटकाया जाता है उनके लिए कि भाई तुम ये अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें यहाँ पर जो सुख होता है उससे ज्यादा सुख मिलेगा, अल्टीमेटली तुम्हें इंद्रिय भोगी करना है ना, तो आप इंद्रिय भोग करना है तो देखो तुम जो करते हो मेरे पास उससे अच्छा ऑफर है, वो करोगे तो अधिक सुख मिलेगा।
तो ऐसा व्यक्ति आकर्षित होकर के ये करने लगता है, फिर धीरे 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 वो वेदों की सत्ता को मानने लगता है। वेद कहेंगे कि नो, तुम ये अनुष्ठान कर सकते हो केवल सुबह के टाइम पे, शाम को नहीं कर सकते। तो फिर वो बोलता है नहीं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, लेकिन ये अनुष्ठान का परिणाम जो मिलेगा तभी मिल सकता है। तो इंद्रिय सुख चाहिए? हाँ चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं वैसे करो, ऐसा जो वेदा बोलते हैं वैसे करो, ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 करके वो वेदों को मानने लगता है, फिर भगवान को मानने लगता है, एंड देन ग्रेजुअली ही कैन कम फॉरवर्ड। और फिर धीरे धीरे वो सकाम कर्म तक पहुंचता है, पहले विकर्म में होता है, फिर धीरे धीरे सकाम कर्म में आता है, फिर सकाम कर्म में फिर धीरे आगे जाकर के फिर वो निष्काम कर्म तक पहुंचता है। सो लाइक दिस इग्नोरेंट पीपल भले ही हो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते कि इग्नोरेंट है तो इग्नोरेंट तो सभी होते हैं, लेकिन जो ग्रोसली इग्नोरेंट है वो लोग इस शास्त्र को नहीं मानते। बट कृष्णा वॉन्ट्स देम ऑल्सो, भगवान का इच्छा है कि वो लोग भी उनके पास आए। तो फॉर दैट रीजन दिस वेदास आर हेल्पफुल।
So someone has to inform them or मतलब ये मार्ग दिखाएं तो जाके वो कदाचित मतलब इस तरफ मुड़ सकते, unless until वो like they won't be knowing at all.
Yeah, anyway they will not know, but भगवान या शास्त्र को भेजते हैं, अपना धाम छोड़ के जाते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, और फिर उस तरह से वो इन लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे प्रभुपाद, तो वो ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं कि जो लोग शायद नींद में से जग जाए। इसलिए दोज आर बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो लोग आते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, या जो लेक्चर्स देते हैं, प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो यही तो काम करते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाकर के उनको आकर्षित करते हैं भगवान के प्रति। फिर भी अगर नहीं मानते तो उनको और अवसर दिया जाएगा, one by one, so many chances. But people, they will keep doing this, अगर वो accept नहीं करेंगे, तो कलयुग का 10,000 साल का समय समाप्त होने के बाद फिर उनको केवल punishment से बचेगा, और ये punishment भुगतते, they will continue to rotate in this material world.
Okay.
प्रभु जी आपने अभी श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो 20th चैप्टर कौन सा श्लोक था प्रभु जी? नंबर
17।
तो प्रभु जी वो जो श्लोक आपने बताया उसमें ये था कि जैसे मनुष्य रूपी बोट है, सॉरी अपना मनुष्य शरीर रूपी बोट है, और गुरु महाराज इसके कैप्टन हैं, और शास्त्रास फेवरेबल ब्रीज, तो ये और फिर भी कोई इसको अगर इसका लाभ नहीं उठा सकता तो वो आत्मा के मतलब सुसाइडल माना जाता है, आत्मा माना जाता है ना प्रभु जी? तो प्रभु जी ये जो श्लोक है अगर उनको ये मतलब ये गुरु की कृपा और शास्त्र मतलब वो शास्त्र को मानने वाले लोगों के लिए है ना ये श्लोक, और अगर मतलब मे बी फॉर गॉडली पीपल बिकॉज उनको गुरु की कृपा भी मिल रही है, तो मतलब ये पूछना था कि
जो इसको ये करता है वो गॉडली है, लेकिन जो इसको फॉलो नहीं करता है वो डेमोनिक है।
ओके ठीक है।
मोर क्वेश्चंस?
हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि निष्काम कर्म अकर्म का सबसेट है या अकर्म निष्काम कर्म का सबसेट है?
Well, in the beginning, अकर्म और निष्काम कर्म both are same, because निष्काम कर्म जो है उसमें फल को त्यागा जाता है, और अकर्म प्रभुपाद कई जगह पर अकर्म को भक्ति योग के साथ भी तुलना की गई है, जिसमें कर्म का बंधन नहीं लगता। सो इन अदर वर्ड्स निष्काम कर्म एंड अकर्म आर सेम, बट भक्ति योग में कर्म के आसक्ति भी चली जाती है, निष्काम कर्म में फल की आसक्ति चली जाती है, लेकिन भक्ति योग में कर्म की आसक्ति भी चली जाती है, रादर कर्म को और फल को दोनों को कृष्ण के शरण में अर्पित किया जाता है। सो उसमें केवल फल अर्पण होता है, निष्काम कर्म योग में, और भक्ति योग में कर्म भी अर्पण हो जाता है।
ओके, तो निष्काम कर्म मतलब अकर्म का सबसेट हुआ, मतलब पहले निष्काम होगा फिर अकर्म तक पहुंचेगा, क्योंकि उसमें भक्ति योग भी है।
यस, मोर क्वेश्चंस?
प्रभु जी, एक्चुअली एक भगवत गीता के श्लोक से पूछना था क्वेश्चन, अभी पूछ सकते हैं प्रभु?
या वैसी कितना लंबा है?
हाँ प्रभु जी, वो जो एक श्लोक है उसमें आप ही चेतसु दुराचारो, उस श्लोक में जैसे उसका मतलब पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है, पर मीनिंग ऐसा कि जो भक्ति मार्ग में है और कभी उनसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो वो समय मतलब तुरंत ही भगवान उनको वापस रीइंस्टेट कर देंगे, इफ ही इज फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस, ही इज फॉलोइंग द प्रोसेस, और फिर ड्यूरिंग द टाइम ऐसा कुछ सिंफुल डीड ही डज, तो ये ठीक मतलब एम आई राइट इन दिस प्रभु?
दिस इज भगवद गीता से।
हाँ भगवद गीता से प्रभु जी।
यस, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, और कार में आपको पता, आपको पता था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करना है जब सिग्नल बंद होता है, तो लेकिन एक बार हो गया तो सरकार ऐसा नहीं करेगी कि आपको सीधा पकड़ करके डाल देंगे, सरकार आपको एक मौका देंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं आपको मिलेगा,
हाँ नहीं प्रभु जी, मुझे इसमें ये पूछना था कि जैसे ये वो कैसे मतलब ये जो सिनफुल कार्य अगर हम करते हैं तो वो किस मतलब कैन यू गिव सम एग्जांपल्स कि वो वही मतलब इफ बाय फॉलोइंग इवन व्हाइल फॉलोइंग द भक्ति प्रोसेस you should if some devotee commits some mistakes we should not consider them to be matlab they will be reinstated very quickly.
This subject is we have already discussed in first module.
Huh.
Maybe we can discuss this part sometime later.
Okay. Theek.
So we have any other question?
महेश, एक रेफरेंस ये था कि सिमिलर श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी क्लियर ऑफ द सोल, सिमिलर श्लोक शायद तक मुझे मैंने कहीं सुना है पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सा श्लोक है।
या क्लियर ऑफ द सोल, वो दैट इज देयर इन भगवद गीता, इसमें ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है, जो मेरी इस बात को समझता नहीं, मेरी then he is in other words he is committing suicide. Yes, I also don't remember the exact sloka number, but I can get you to you.
Okay, thank you.
So we go to the mantra 4. The connection mantra 3 ke saath further connection is tarah se hai ki ye chautha mantra jo hai wo explain karta hai ki jo atma hana people jo hai, जो आत्मा अर्थात जो सुसाइडर्स स्पिरिचुअली सुसाइडर्स जो है वो लोग भगवान के ज्ञान में रहकर के कर्म क्यों नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू डू इट। इसलिए फिर ये बताया जाता है कि भगवान जो है वो भौतिक मानसिकता वाले जो लोग होते हैं उनके लिए अचिंत्य रहते हैं, वो समझ नहीं पाते, अनकंसीवेबल रहते हैं, और वो तभी प्रकट हो सकते हैं जब वो अपने आप को प्रकट करना चाहे, अदरवाइज ना तब तक नहीं हो सकता। सो दैट इज मंत्र 4 इन अदर वर्ड्स, इसका शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग अब चाहिए, थीम मेन थीम जो मंत्र 4 का वो है कि कृष्णा सब जगह है साथ साथ में अपने धाम में भी है, और इसलिए केवल उनको उनकी कृपा से समझ सकते हैं और तर्क वितर्क से उनको नहीं समझ सकते, ऐसे भगवान को। that is the main theme of this mantra 4. So, can you read translation of mantra 4?
Yes, Prabhu. अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वाले को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में अधिक श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं।
तो यद्यपि भगवान अपने धाम में रहते हैं, फिर भी उनकी सारी शक्तियों के माध्यम से वो सब जगह व्याप्त है। जैसे हमने भगवद गीता में एग्जाम्पल पढ़ा था कि राजा अपने स्थान में रहता है, लेकिन किसी राज्य के किसी भी कोने में उसकी शक्तियां काम करती है। उसको पर्सनली वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई ये साउथ प्रोविंस में क्या हो रहा है या नॉर्थ प्रोविंस में क्या हो रहा है और वहां की सरकार ही डजंट नीड टू इसके अंदर घुसना नहीं पड़ता। ही कैन डू इट बाय हिज शक्तिज ओनली। विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिसमें भगवान की शक्तियों को अलग अलग प्रकार की उपमा दी गई, ठंडी और गर्म के। एक देश स्थिति स्याग्ने ज्योत्ना विस्तारणीय था परस्य ब्रह्मण शक्ति प्रसिद्धम अखिलम जगत। ये सुना हुआ श्लोक होगा आपने विष्णु पुराण का। जिस तरह से अग्नि में से प्रकाश भी आता है और उस सब जगह फैल जाता है, इस तरह से परमेश्वर की शक्तियां, परम ब्रह्म की शक्तियां सारे संसार में फैली हुई है। सो हीट एंड लाइट आर कमिंग फ्रॉम फायर। तो ये भगवान की कौन सी मुख्य शक्ति है वो हमने पहले अभी चर्चा किया था। कौन सी मुख्य शक्ति? एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा और तीसरी है ततस्था। और भगवान चाहे अपने धाम में स्थिर हो, फिर भी अपनी शक्तियों को उस संसार के हर कोने में फैला सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कोई ऐसा मानता है कि भगवान तो फैल गए, तो अभी तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ, ये कौन सा प्रिंसिपल माना जाता है? दिस इज मायावादी प्रिंसिपल। ऐसा मानते हैं कि एक पेपर का टुकड़ा था, उसको एक एक टुकड़ा बांध दिया, एक ब्रह्मलोक में भेजे, एक नारद ये अप्सरा लोक में, एक देव लोक में, एक गंधर्व लोक में, अब बचा क्या? कुछ नहीं, खत्म हो गया भगवान। सो दैट इज मायावादी। और हमने क्या पढ़ा था? पूर्णमद पूर्णमिदम, 1+1=1, 1-1=1। सो भगवान पूर्ण है, इसलिए जो तर्क करने वाले, मानसिक तर्क करने वाले बड़े बड़े फिलोसोफर्स और जिनकी कम बुद्धि वाले हैं अज्ञानी जीवात्माएं और जो भगवान के द्वेषी लोग हैं, वो लोग कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते। लेकिन नेवर, क्योंकि भगवान स्वयं इतने अनंत है, बड़े बड़े ऋषि नहीं समझ सकते, तो ये अज्ञानी लोग क्या समझेंगे? एक अंश सारे संसार को धारण करने वाले हैं, माया को भी वश में करते हैं, प्रकृति के तीन गुण उनके अंडर में कार्य करते हैं, ऐसे परम भगवान को कोई अज्ञानी व्यक्ति मानसिक तर्क वितर्क से भला क्या समझ पाएगा? और एनीवे, वी आर ओनली पार्टिकल, ओनली स्मॉल पार्टिकल। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर ततस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। भेद अभेद प्रकाश, भेद भेद का प्रकाश होता है कि एक साथ एक भी है और भिन्न भी है, डिफरेंट भी है। देयर इज ततस्थ शक्ति। सो इन अदर वर्ड्स, अपनी अपनी क्षमता से हम भगवान को नहीं समझ सकते। एट एवर पंथास्त कूड शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवान। बड़े बड़े ऋषि मुनि पंथास्त कोटि शतवत्सर करो हजारों सालों तक मन की गति से दौड़ेंगे, मन की गति से, पंथास्त कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो वायुर थापि मनसो, मन की गति से दौड़ेंगे, फिर भी ये मुनि लोग भी भगवान को नहीं समझ सकते, तो भगवान को केवल उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। ऐसा भगवद गीता में कोई श्लोक है क्या?
है पर याद नहीं आ रहा।
अच्छा,
हरे कृष्णा बोल दिए इनको,
कौन सा श्लोक है?
चतुर्थ श्लोक ही है ना, तेषां सतत युक्तानां भजतम पुरुषं तदाम बुद्धि योगम तम।
लेकिन ऐसा भगवान ने ऐसा कहा है कि ऋषि और देवता लोग मुझे नहीं समझ सकते?
क्या क्या पूछा आपने?
ऋषि और देवता लोग मुझे नहीं समझ सकते, ऐसा भगवान कहते हैं?
हाँ कहते हैं ना।
आप तो कहते हैं, लेकिन क्यों, कब कहाँ कहते हैं और कौन से श्लोक से कहते हैं?
प्रभु जी 10.2 शायद।
क्या है वो श्लोक?
न मे विदुः प्रगणा प्रभवम न महर्षयः अहम् आदिर देवानां महर्षिणां च सर्वशः। नहीं
इसलिए कोई ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता लोग, ये लोग भी नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा नहीं समझ सकते भगवान को, देवता नहीं समझ सकते, और हमारे 21वीं सदी के 22वीं सदी के लोग आकर के ये ढिंढेरा पिटते हैं कि हम जानते हैं ना भगवान क्या होता है। What they know? They are foolish, ignorant people. They don't know anything. They are just a small particle, एक छोटे से तुच्छ अंश है भगवान के। इसे ईशोपनिषद उन लोग को ये चेतावनी देते हैं कि भगवान को मानसिक तर्क वितर्क के माध्यम से समझने का प्रयास मत कीजिए। He's saying this. केवल भक्ति के माध्यम से ही, भक्त्यातुनन्यया शक्य अहमेव विदो, केवल मुझे भक्ति के माध्यम से ही जाने, भक्त्या माम अभिजान। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत्। कृष्ण के तो श्री कृष्ण नामादि न भवेत्। सेवोन्मुखे जीवादो स्मय स्वयमेव स्फुरत्यद, स्वयमेव स्फुरत्यद, स्वयमेव स्फुरत्यद का अर्थ होता है कि हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर के वो अपने आप को प्रकट करेंगे हमारे सामने। नॉट दैट कि हमारी अपने शक्ति से होगा, नो, स्वयमेव स्फुरत्यद। कैसे? सेवोन्मुखे ही जीवादो, ये हमारी जो इंद्रियां है उसको भगवान की सेवा में जोड़ने के माध्यम से। इसलिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ह्रायम इंद्रिय, भगवान के दिव्य नाम रूप, उनका स्वरूप, उनके लीला, ये हमारी अभी की जो ब्लंट मटेरियल सेंसेस है इंद्रियां, उसके माध्यम से भगवान को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हम भक्ति मार्ग में जुड़े, लेकिन भगवान को रियलाइज करना ये आगे फर्दर स्टेप्स इन प्रोग्रेशन ऑफ डिवोशन सर्विस। तो जो लोग भक्त है या भगवान की, भगवान को समझने का प्रयास करना चाहते हैं या उनका एक्टिव रहकर के भगवान की सेवा करना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, शब्द से, इन वॉट एवर वे, वो लोग अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? सबमिसिव एटीट्यूड, विनम्रता की भावना। And then only one can understand the Supreme Lord, because then Lord will appear to them and help them to understand. जैसे यशोदा माता बांधने का प्रयास किया, लेकिन यशोदा की हिम्मत नहीं थी बांधने की। सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन यही काम किया उन्होंने, दुनिया भर की रस्सियां इकट्ठा करके बांधते गए, बांधते गए, बांधते गए, और तय तो ऐसा तय किया गया था कि भगवान की जो शक्तियां है, उन शक्तियों ने आपस में ऐसा तय करके रखा था, बोले आज तो हम बंधेंगे ही नहीं, भगवान की जो प्रभुता शक्ति है, उनका एक्सपांसन विस्तार करने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति सोचने लगे तुम बांधो जितनी रस्सी बांधना है यशोदा माता को, आज नहीं बनने वाले, तो देयर वाज नॉट नॉट एट ऑल पॉसिबल, नो चांस कृष्ण का। I'm sorry, there is a noise coming from the background. So, वो कोई शक्तियां काम नहीं कर रही थी, बाद में भगवान की कृपा शक्ति आई, सारी शक्तियां बीच में से हट गई और सब सलाम बने लगे, यस सर यस सर यस सर, क्या करना है। फिर कृपा शक्ति ने कहा यशोदा इतना मेहनत कर दिए, उनको बांधने दो। तो फिर भगवान की सारी बाकी सब शक्तियां चुप हो गई, तो फिर यशोदा माता बांध पाए। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज कृष्ण स्वयं एव स्फुरति, भगवान ने बंधा जाना स्वीकार किया, इसलिए कोई बांध पाया। इन अदर वर्ड्स, भगवान हमें सहायता करेंगे उनको समझने के लिए हमारे प्रयास को देख करके। So we go to the next text, mantra 5. Any question?
तो यहाँ पे प्रभु जी भगवान जो सोल किलर उनको भी सहायता करेंगे एक ना एक दिन।
किसको?
जो आत्मा का किलर है, जो आफ्टर मैनी मैनी लाइफ टाइम, जैसे कि भगवद गीता में बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञान मन मन प्रबुद्ध थे।
एक्चुअली आत्महन लोग जो होते हैं वो तो बहुत समय के बाद प्रयास करते समझने का, दे हैव टू टेक लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। सो इसलिए कृष्णा अपनी भक्तों की कृपा से और उनकी अपनी कृपा से वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। ही इज स्टेइंग इन हिज ओन धाम, उनको कोई उनकी शक्तियां ये सब कार्य कर देती है, वो तो अपने धाम में है, एंजॉइंग कंपनी ऑफ हिज एसोसिएट्स, अपने सखा अपने गोपियां माता पिता उन सबके साथ ही एंजॉयिंग इस पास्ट टाइम, कंप्लीटली फ्री, टोटली फ्री। लेकिन जब किसी को आवश्यकता होती है भगवान को, कृष्ण हमारी सहायता कीजिए, तो कृष्ण वहां पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं, यस आई एम हियर। तो भगवान के भक्तों को तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण बुक में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे डेंजर्स आए थे, यमुना बे क्या है वो विष जलाप व्याल राक्षस, फिर अब ब्रजमंडल वाला कोई भक्त नहीं है, विष जलाप व्याल राक्षस वैद्युता नलात। Anyway, so there are so many problems came in Vrindavan. Tons of haters also go, but no problem. Avashya Rakshibhi Krishna Vishwasya Palam. Kisi bhi avastha mein Bhagavan ki sahayata karte hai. So this way, Prabhupada also mentioned these things in different ways.
In the present,
what is that?
Sorry. You complete. I just wanted to know भगवान के लक्षण क्या, मतलब वो जानना था, wanted to know the word. What do you mean by भगवान के सभी लक्षण?
भगवान के सभी लक्षण?
Yeah. In this particular fourth mantra, उसका जो purport है उसमें last में ये बताया है, पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षण को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किसी प्रकार कार्य करती है।
Yeah, I mean, so, लक्षण is morally, specifically, it's qualities. भगवान के गुणों को जानना।
ओके।
ओके। सो तो माया कैसे काम करती है? In the prison house of the government, Prabhupada says, government takes care that the prisoners are comfortable, they get sufficient food. But they are, if they are diseased, they receive hospital treatment. Every care is there but under punishment. इस भौतिक संसार का तुलना अगर किया जाए, सिमिलरली मटेरियल वर्ल्ड में केयर मिलती है लेकिन पनिशमेंट के साथ. इफ यू डू दिस स्लैप, इफ यू डू दैट किक, इफ यू डू दिस देन दिस इज गोइंग ऑन. माया इस तरह से आपको चापट मारती है, लात मारती रहती है और आपका ध्यान भी रखती है. जैसे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हो देन ओनली यू आर टेकन केयर बाय द लॉर्ड directly or by his devotees. Excuse me. Yeah. So, any more question or we can go further? Yes.
हमेशा
कोई ना कोई भगवान का द्वेषी
रहता ही है, सभी हमेशा क्या रहता है, भगवान का द्वेषी कोई ना कोई होता ही है.
हाँ, इतने सारे अनंत जीवात्मा हो गए तो ऐसे नमूने तो होंगे ना अनंत. अनंत
हरेश्वर प्रभु जी, प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड में आई मीन जो ये डेमी गॉड्स के जो डेजिग्नेशन है वो तो एटर्नल नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के अवॉर्ड में जो है वहां तो डेजिग्नेशन एटर्नल होगा ना, लाइक उनके पेरेंट्स है फिर उनके सखा है, तो वो एटर्नल है कि वो भी चेंज होता रहता है.
Well, वो नित्य सिद्ध अवस्था मानी जाती है, वो एटर्नल होता है, बट संसार में नियम होते हैं कि यू आर बाउंड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई नियम नहीं होता है. एक कोई भक्त वहां पर मोर का रूप भी ले सकता है. He wants to, कृष्ण का इच्छा हुआ कि उनको नाचते हुए मोर को देखना है, और वहां पर एक भक्त का इच्छा हुआ कि मैं ही मोर को क्यों बुलाना, मैं ही मोर बन जाता हूँ, मैं ही नाचूंगा भगवान के सामने, तो भगवान के सामने वो मोर बन के नाचेगा, तो ही कैन टेक द फॉर्म, बट दैट सर्विस इज डन नाउ. लेकिन अब भगवान को थोड़ी धूप लग रही है, तो वही मोर वाला जो भक्त था, मोर बना हुआ था, उसको लगा कि अब भगवान को धूप लग रही है, तो नाउ ही कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड, तो बादल का रूप ले सकता है, दैट इज गिविंग अ शेड, तो वो शेड मिलेगा. लेकिन शेर के बाद फिर भगवान का इच्छा हुआ कि नाउ आई वांट समबडी टू मसाज मी, द सेम क्लाउड कैन अगेन अपीयर एज अ सखा एंड ही कैन मसाज हिम और एज अ सर्वेंट ही कैन मसाज. सो एनीबडी कैन टेक एनी फॉर्म इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स.
ओके प्रभु जी, थैंक यू.
ओके, सो we can discuss on mantra 5.
Oh.
The connection kya hai iska humne already charcha kiya tha, as I briefly tell about. He mansik tarp itak se bhagwan ko nahi samajh sakte, ye to humne chauthe mein suna tha. Panchve mein bhagwan ke isme charcha hui hai, baddha jivatmaon ke liye bhagwan ki shaktiyan किस तरह से इनकंसीडरेबल है, क्यों वो लोग समझ नहीं सकते. तो मेन थीम ये है कि भगवान की शक्तियां अपने आप में इतनी सारी है कि कई बार एक शक्ति दूसरी शक्ति को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और ये जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है अपनी शक्तियों के बीच में, और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से भगवान अचिंत्य शक्ति धारण करने वाले है, ऐसा आप समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल गर्मी और ठंडी दोनों शक्तियां भगवान की है, लेकिन दोनों एक साथ आते नहीं है, ठंडी और गर्मी एक साथ रह नहीं सकते, बिकॉज देन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो भगवान की अलग अलग शक्तियां है, और कभी कभी ये शक्तियां एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, एंड दैट इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड इनकंसीवेबल. यू कैन रीड दैट
परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता, वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है.
तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद अवंतिके तद तद वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता. सो नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. जब पहली बार जब मैंने जब शुरू शुरू में पहली बार जब सुना था ना, वो पास में भी है और दूर भी है, चलते भी है और नहीं भी चलते. तो आई वॉज लाइक 13-14 साल की उम्र में, 13-14 साल का था. तो मैंने कहा कि भाई एक कोई एक चीज बताओ ना, चलते है या नहीं चलते, तो क्या हम समझना क्या है इसमें, चलते क्या है, चलते है या नहीं चलते, दूर है या पास है या फिर बीच में है. तो आई वॉज यू नो इग्नोरेंटली आस्किंग सच फ्रेश क्वेश्चंस. बट देन व्हेन यू रीड द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता के माध्यम से और इस, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये भगवान की जो क्वालिटीज है ये कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करती है. जैसे पास में है, दूर है, फिर चलते हैं, नहीं चलते हैं, अंदर भी है, बाहर भी है. तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे समझा जाता है, पहले कौन नहीं समझ सकता है, ये इसको हम चर्चा करें. तो मूर्ख नहीं समझ सकते, नास्तिक नहीं समझ सकते, मायावादी लोग नहीं समझ सकते, अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, और कौन समझ सकते हैं, शरणागत समझ सकते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे सिंसियर डिवोटी समझ सकते हैं. तो कैसे समझा जाता है, दैट वी कैन डिस्कस. वो सुप्रीम पर्सनालिटी है जिस वे वी कैन डिस्कस. तो इन अदर वर्ड्स ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या प्रूव करता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन ये प्रूव करता है कि भगवान को समझने की जो हमारी शक्ति है वो बहुत सीमित है. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड फुल्ली. और दूसरा एक तरीका ये भी है कि भगवान किसी भी तरीके से हमारी सेवा, खास करके ड्यूटीज के रूप में से हमारी सेवा को भी स्वीकार कर सकते हैं. भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है और सभी शक्तियों के एकमात्र स्रोत है. सो दिस इज द कंक्लूजन कमिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो वॉक एंड डजंट वॉक, इसके विषय में प्रभुपाद कहते हैं कि 40 साल पहले जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तो मेरा दूसरा पुत्र जो कि उस समय 4 साल का था, हम दोनों पैदल चल रहे थे, वहां पर जा रहा था और रात के समय में, और अचानक मेरे बेटे ने मुझे पूछा, पिताजी ये चंद्र हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है. तो प्रभुपाद ने कहा कि दैट इज वेरी इंटेलिजेंट, ये तो बुद्धिमान प्रश्न है. तो इन द सेम वे चंद्र ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन आपने उसको देखा है स्विफ्टली चलते हुए मटेरियल ऑब्जेक्ट को, लेकिन चंद्र को हमने ऐसे चलते नहीं, साथ में ही रहता है, कितना दूर चले जाओ साथ में ही रहता है. जैसे एग्जांपल के रूप में यू आर गोइंग टू एरोप्लेन योर ट्रेन, तो आप क्या देखते हो, सूर्य चंद्र आपके साथ साथ ट्रैवल करते हैं. जैसे मैं एक बार अमेरिका की फ्लाइट थी, लंबी वाली फ्लाइट, और लंबी वाली फ्लाइट के समय पे अहमदाबाद में सूर्य था आकाश में, और इसी सूर्य को हम उठा करके पकड़ते पकड़ते उसको लेकर के चलते गए चलते गए चलते गए, यहां तक कि अमेरिका पहुंचते आए तभी भी सूर्य वहीं पर सामने ही था, अंधेरा हुआ ही नहीं. हम सो गए बीच में, नाश्ता किया, फिर उठे, फिर रेस्ट किया, इतने सारे घंटे बीत गए लेकिन अभी भी सूर्य जी सामने ही थे. अब सूर्य हमारे साथ साथ वहां पर अमेरिका पहुंच गया. अगर सूर्य वहां पर इस तरह से आ सकता है तो कृष्ण के लिए क्या असंभव है. तो ऑल्दो ही इज इन वृंदावन, वो गोलोक वृंदावन में है, अपनी लीलाओं में व्यस्त है, और आप निरंतर अपने भक्तों के साथ एसोसिएट स्वार्थों के साथ लीला में मग्न है, फिर भी वो सब जगह विद्यमान है, सब प्रकार की शक्तियां उनकी प्रदर्शित कर सकते हैं. इसका अर्थ है कि भगवान चलते भी है और नहीं भी चलते. He walks and doesn't walk. Yeah. वो अपने doesn't walk means he is at his home. वो वृंदावन गोलोक वृंदावन में वहीं पर रहते हैं हमेशा और एंजॉय करते हैं, और एट द सेम टाइम सब जगह वो विद्यमान है, He is everywhere. Where he is far and he is close. कैसे? कि अगर आप कोई मेल बॉक्स देखते हो तो हम उस मेल बॉक्स में लेटर डाल देते बॉक्स के अंदर तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और लेकिन कोई भी बॉक्स में डालेंगे तो नहीं पहुंचेगा लेकिन वो पर्टिकुलर ऑथोराइज बॉक्स है इसमें डालेंगे तो पहुंच जाएगा पोस्ट चाहे कितना भी जोर हो। इसी तरह से भगवान का जो अर्चा विग्रह का स्वरूप है वो भगवान का अवतार माना जाता है। जो भी सेवा आप अर्चा विग्रह की करते हो इवन दो वो आप देश के किसी भी कोने में हो सकते हो यू कैन बी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड यू कैन ऑलवेज सर्व हिम किसी भी कोने में। जैसे अभी विदेशों में आप कई बार जाते हो हम जाते हैं इतना लंबा चौड़ा रास्ता होता है और फिर कहाँ पर्वतों के ऊपर किसी कोने में जाकर के वहां पर हमारा छोटा सा इस्कॉन सेंटर वहां पर भगवान के विग्रहों की पूजा हो रही है और वहां पर भोग लगाया जाता है आरती हो रही है सो वी ऑल सी दैट एंड एक्सेप्टिंग भगवान एक्सेप्ट कर रहे। तो अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान स्वीकार करते हैं एवरीथिंग मीन्स वो जितना भी दूर होते हैं उतना हमारे पास में भी है हम सबने भी रिकॉल कि हम बिल्कुल हमारे पीछे ही बैठे इज वॉचिंग वॉट एवर यू आर डूइंग हमारे मन में क्या चल रहा है हम क्या सोच रहे हैं सब कुछ हम उनसे बिल्कुल हाइड नहीं कर सकते। तो जिनको भगवान को आंखों से देखने का इच्छा है उसके लिए भगवान अपना अर्चा विग्रह भी देते हैं। नाउ यू कैन सी विच योर आइज बहुत इच्छा था ना तो देख नहीं पाते कृष्ण आपको देखना है वो क्या है यार देखो विग्रह के रूप में आ गया नाउ यू कैन सी मी। मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान का उपहास करते हैं जैसे हिरण्यकश्यप था हाँ भगवान तुम्हारा कहाँ पर है इस कमरे में है हाँ है ना कहाँ पर है दिखाओ इस कमरे में हाँ उस कमरे में भी है। तो प्रहलाद ऐसे गप्पे नहीं मार रहे थे ऐसे ब्लफ नहीं कर रहे थे कि हाँ अभी बोलना तो पड़ेगा ही ना पूछ रहे तो अभी ऐसा नहीं ही वॉज रियली फीलिंग ही वॉज वॉचिंग द लॉर्ड एवरीवेयर सो दैट इज सरेंडर to surrender there, they can see Krishna everywhere. और वो हिरण्यकश्यपु भगवान को समझ नहीं सकता था because he was a demonic. भगवान सगुण भी है भगवान निर्गुण भी है। सगुण का अर्थ होता है सब प्रकार के गुणों से पूर्ण और निर्गुण का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त that is निर्गुणा। तो सभी शक्तियों के स्वामी होने के कारण वो स्वामी होने के कारण कभी भी उनके प्रभाव के अंतर्गत नहीं आते अर्थात भौतिक शक्तियां भगवान के अंदर काम करती है अंदर भगवान के अंतर्गत इसलिए ये भौतिक शक्तियां भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती किसी भी तरह से लेकिन भगवान उनको प्रभावित अवश्य करते हैं। फिर भगवान हृदय के अंदर भी है और हृदय के बाहर भी है अंदर और से बाहर और से तो अंदर कैसे है बाहर तो हमने चर्चा किया भगवान सब जगह है लेकिन अंतर भी है हमारे हृदय में तो परमात्मा के रूप से भगवान हमारे अंतर में भी है। तो ये एकत्वम आपको प्राप्त होता है भगवान की शक्तियों के बीच में समानता और कॉन्ट्रोवर्सी विरोध तो ये दोनों ही चीज आप समझ सकते हो इस माध्यम से। So these are the contradictory qualities of the Lord and we can understand by different examples. बाहर भगवान है अपनी शक्तियों के माध्यम से और अंतर है परमात्मा के माध्यम से। बाहर भगवान है सूर्य प्रकाश के माध्यम से अंदर भगवान परमात्मा के माध्यम से like this. So this was mantra 5 so any question with this we can talk some more on mantra 5 also bhagwan ke kaan bhi hai jo hazar hazar mile millions of mile dur hote hue bhi aapki whisper hai na thoda sa kaan mein krishna mai sahayata kijiye to run hey krishna ये दुर्वासा मुनि के ये सब आए है, बहुत सारे लोग शिष्य हो, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, इसमें ही सहायता कीजिए। या फिर द्रौपदी वस्त्रहरण में शी वॉज विस्परिंग ऑनली कृष्णा, हो आई एम देयर, डोंट वरी, मैं हूँ, आई विल हेल्प यू। तो ये है भगवान का। तो कृष्ण बहुत दूर भी है, बट प्रेमांजनक चुरी तो भक्ति विरोचन है, प्रेमांजनक प्रेममयी आंखों से अगर भगवान को देखते हो तो भगवान आप जहां देखो वहां देख सकते हो। वेद क्या कहते हैं, अपानी पादो जवनक रहिता अपानी पाद। अपानी पाद का अर्थ होता है जिनको हाथ भी नहीं और पांव भी नहीं है, लेकिन आप जो भी यज्ञ में ऑफर करते हैं वो सबको एक्सेप्ट करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, दूरस्थम, दूरस्थम बहुत दूर भी है। तो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शन मेंशन इन मंत्र 5। सो वी कैन गो टू मंत्र 7। मंत्र 6 या
जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता।
अमन्ये वान पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। दिस इज आल्सो फेमस श्लोक। तभी 6-7 अंक में हमने क्या बताया था कि महाभागवत जो भक्त होता है उसका विजन या उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। मंत्र 5 में हमने सीखा था कि भगवान की कुछ क्वालिटीज, कुछ उनके गुण जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज भी थी और सब जगह विद्यमान, सर्वथा विद्यमान है, वो सारी चीज भी हमने चर्चा की थी। अभी मंत्र 6 इस चीज का वर्णन करता है, जो वास्तव में भगवान की शक्ति को समझ सकने की क्षमता रखने वाला है, जो समझने की क्षमता रखता है भगवान की शक्तियों को। ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की, तो भगवान की शक्तियों को समझने का प्रयास करता है या भगवान को समझ सकने की क्षमता रखता है, या भक्त है या फिर भक्ति मार्ग में जुड़ा हुआ या शरणागत है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ऐसा जो भक्त होता है या फिर महाभागवत भक्त होता है, वो सब जगह भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। यू कैन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सन, यू कैन सी एवरीवेयर। आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त जो होता है वो सबको भगवान के संबंध में देखता है और उस इस प्रकार के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए महात्माओं के चरणों को अनुगमन करना पड़ता है। You have to follow the great source. What is that? Mahajano ye na katha sapantha. We should follow the higher authorities. That is the only way we can understand the Supreme Personality. So, 3 classes of devotees Prabhupada ji ne isme varnan kiya hai. There are 3 classes of devotees. हमने ऑलरेडी एक बार चर्चा किया हुआ है, बट एज अ समरी अगेन आई विल, वी आर डिस्क्राइबिंग इट। आचार्यम एव हरये पूजाम य श्रद्धये हते न तद् भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। कौन सा भक्त नियोफाइट माना जाता है, जो भगवान के विग्रहों की पूजा करने में उत्साह से जुड़ जाता है, श्रद्धा से, लेकिन अन्य सब भक्तों को आदर देना उसको आता नहीं है। तो ऐसे भौतिकवादी जो भक्त होते हैं, प्राकृतिक भक्त, उसको नया नियोफाइट भक्त माना जाता है। वो क्या समझते हैं कि भगवान तो केवल मंदिर में ही है और मंदिर के बाहर भगवान हो ही नहीं सकते, वो विग्रह के रूप में है और अलग अलग लेवल की जो डिवोशनल कैटेगरीज होती है कि कोई आगे बढ़ा हुआ भक्त, कोई मध्यम है, इस तरह से अलग अलग जो भक्त होते हैं उन सबके बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं होता है, वो बेसमझ नहीं सकता है, और जो रूटीन फॉर्मूला होता है उसको कंटिन्यू करता रहता है, वो आपस में झगड़े करना और ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से ग्रस्त होना, एक की भक्ति दूसरे की भक्ति की तुलना करते रहना, ये सब जो है वो वास्तव में कनिष्ठ अधिकारियों का लक्षण माना जाता है, और सेकंड क्लास जो मध्यम अधिकारी है उनका प्रसिद्ध श्लोक है ईश्वरेषु तद अधीनेषु बालिशेषु विशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। तो जो भगवान में उनके भक्तों में ईश्वरेषु प्रेम, भगवान को प्रेम करता है, उनके अधीन उनके जो भक्त है उनके साथ मैत्री का व्यवहार करता है, फिर बालिशेषु जो लोग इनोसेंट है हृदय से उन लोग की उनको प्रचार करता है, कृपा उन लोग को कृपा देता है, और ये और दुसत सुजन जो द्वेषी है भगवान के उनका उपेक्षा करता है, अतिष्ट जो नास्तिक प्रकार के है या जो लोग भगवान का निंदा करने वाले हैं ऐसे लोगों की उपेक्षा करता है, ऐसा करने वाला जो होता है यह करोति स मध्यमा। और उत्तम अधिकारी का हमने चर्चा क्या किया था कि जो सब कुछ भगवान से संबंध में देखता है, एवरीथिंग भगवान के कनेक्शन में देखता है, भगवान को संबंधित करके, और सबको भगवान का अंश मानता है, भगवान का पुत्र मानता है, चाहे वो कोई भी हो वो भगवान का अंश मानता है सबको, और भगवान को भगवान की उपस्थिति को सबके हृदय में देख सकता है, वो ऐसा जो भक्त होता है वो उत्तम अधिकारी के रूप में माना जाता है, जो अपने आप को सबसे हीन मानता है बाकी सबको अच्छा मानता है श्रेष्ठ मानता है, दैट इज उत्तम अधिकारी। तो जो ऐसा जो भक्त होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि कौन नास्तिक है कौन आस्तिक है, वो सबके अंदर भगवान की उपस्थिति को समझ सकता है। तो एक रूप से कैसे इनडायरेक्टली इसको समझ सकता है, इसे प्रिजनर है, कोई कैदी है, ही इज ऑल्सो सर्विंग द गवर्नमेंट बट बाय फोर्स, वो भी सरकार की सेवा तो वो भी करता है लेकिन उसको करवाना पड़ता है सेवा। तो इसी तरह से जो बद्धात्मा होते हैं वो लोग भी इनडायरेक्टली प्रकृति के आदेशों का पालन ही करते हैं इनडायरेक्टली, सो इवन दो दे आर इन एबोमिनेबल स्टेज ऑफ द लाइफ बट महाभागवत देखते हैं कि दे आर इवन दो दे आर प्रिजनर्स बट दे आर ऑबेइंग गवर्नमेंट बाय फोर्स, दे आर ऑबेइंग गवर्नमेंट। सो उत्तम अधिकारी का जो दृष्टिकोण है वो वास्तव में यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है, सारे संसार को अपना परिवार मानता है, और जितने भी जीवात्मा है उन सबको अपना अपने ही लोग मानता है, वो अपने लोग है, वो किसी को उसके लिए कोई पराया नहीं होता है, सबके सब अपने ही लोग है उसके। ये इस प्रकार का दृष्टिकोण कोई साधारण राजनेता या कोई भौतिकवादी व्यक्ति के माइंड में ये आ नहीं सकेगा, क्योंकि ये लोग तो हमेशा भौतिक चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन केवल ये सही जो सेवा करना चाहता है उत्तम अधिकारी प्रकार का जो भक्त होता है यही कहना है, अदरवाइज वो फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं बड़े बड़े समाज सेवा करने वाले, लेकिन वो लोग भी इस प्रकार का जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है भगवान को केंद्र में करके, गॉड कॉन्शियस कम्युनिज्म या गॉड सेंटर कम्युनिज्म, उसको लोग नहीं समझ पाते। कैसा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ऐसा ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है, दिस इज देयर स्पेशल क्वालिटीज ऑफ उत्तम अधिकारी। तो we have talked good about उत्तम अधिकारी। तो वो जो भक्त होता है वो अनुपश्यति, अनुपश्यति का अर्थ होता है दे आर फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्यस। जैसे अपनी आंखों से वो देख नहीं सकता, भक्त जो होता है वो क्या करता है, कान से भगवान को देखता है, आंखों से नहीं देखता। तो कान से कैसे देखते हैं, भगवान के भक्त जो वर्णन करते शास्त्र में से जो लीलाओं का, उसको फिर वो समझते हैं और उसी माध्यम से वो लोग सीखते हैं। सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड। प्रभुपाद इसके विषय में कहा है कि सो महाजनो ये पंथा कंप्लीट एग्रीमेंट अमॉन्ग द उपनिषद्स, वेदांत सूत्रस, वेदास, भगवद्गीता एंड श्रीमद् भागवतम, एंड नो वन शुड ट्राई टू रीच एनी कंक्लूजन अबाउट द वेदास विदाउट रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ व्यासदेव्स डिसिप्लिक सक्सेशन, हु बिलीव इन द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एंड डिवर्स एनर्जीज एज दे आर एक्सप्लेन इन ईश उपनिषद। प्रभुपाद कहते हैं कि उपनिषद, वेदांत सूत्र, वेद, भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सारे के सारे ग्रंथ एक ही निष्कर्ष पर आते हैं, जो ईशोपनिषद में बताया गया है इससे एक ही निष्कर्ष पर आते हैं। और इसको केवल उसी तरह से समझा जाना चाहिए कि व्यास देव से शुरू होने वाली जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस परंपरा के माध्यम से इसको स्वीकार करना चाहिए, जो भगवान को और भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। तो जो डिसिप्लिक सक्सेशन के माध्यम से नहीं समझते, जो भगवान गुरु शिष्य परंपरा को समझ, उसके माध्यम से भगवान को समझते नहीं है, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए हम कहते हैं ना हमेशा कि अगर आप चैतन्य को समझना चाहते हो तो छह गोस्वामियों को आप अंडरस्टैंड करो, भक्तिवान ठाकुर को अंडरस्टैंड करो। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा देन यू हैव टू फॉलो द वैष्णव आचार्य, आचार्य जो कहते हैं उस हिसाब से हमें भक्ति मार्ग में चलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। देन वी कैन अनुपश्यते, अनुपश्यते क्या है, फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्य, ये एक्सेप्ट करना है और कुछ अवॉइड भी करना चाहिए। अवॉइड करना है दैट इज जो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आते हैं उन लोग के पास हमें ज्ञान नहीं लेना है, या फिर जो उत्तम भक्त होने का ढोंग करते हैं ऐसे लोगों के पास हमें नहीं जाना है, वो लोग हमें नहीं सिखा सकते आध्यात्मिक जीवन की विषय वस्तु। अनुपस्थिति के तीन तरीके हैं, अनुपस्थिति मीन आचार्य को फॉलो करना है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, और भगवद्गीता भागवतम की कॉमेंट्री को भी हमें जो शास्त्र आधारित है उसी को एक्सेप्ट करना है इस परंपरा के अंदर अंतर्गत, और भगवान की दिव्य शक्तियों को समझना है। सो लाइक दिस वन शुड अंडरस्टैंड दैट तीन प्रकार के भक्त हैं और वो तीनों प्रकार के भक्त में उत्तम सर्वश्रेष्ठ है, और ये लोग तभी समझ सकते हैं, उत्तम भक्त भक्ति को तभी समझ सकते हैं जब वो आचार्यों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। So otherwise people cannot understand, devotees can understand. So this Krishna consciousness movement is for that purpose, that people should be taught, लोगों को सिखाना चाहिए, you are eternal servant of God, आप भगवान के शाश्वत दास हो, don't falsely claim that you are God, if you don't care for God, you have to care, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं, ये श्री रणवीर सिंह को बोलता था, I don't care for God, but God came at the time of his last moment, you see. इस तरह से भगवान अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, भक्तों के आचार्यों के माध्यम से वो समझ सकते हैं भक्त लोग, बट भौतिकवादी लोग कभी नहीं समझ सकते। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मंत्र 6। एनी क्वेश्चन विद दिस?
हरे कृष्ण प्रभु जी, तो ये अनेक लोग, लाखों करोड़ों लोग अभक्तों से भी सुनते हैं जो कि डिसिप्लिक सक्सेशन में फॉलो नहीं करते हैं, तो एज पर स्क्रिप्चर उन्हें तो सुनना ही नहीं है इफ यू रियली वांट टू नो गॉड, बट देन व्हाई इज इट दे आर हियरिंग, और वो जो
डिफिकल्ट क्वेश्चन
द पर्सन हु इज स्पीकिंग ही हिमसेल्फ नोज की ही डजंट बिलोंग ही मस्ट बी नोइंग ना दैट ही इज नॉट बिलोंग टू दिस डिसिपलिक स्ट्रक्चर एंड ही इज जस्ट ट्रैपिंग द क्राउड और मे बी अट्रैक्टिंग द क्राउड दैट ही इज वेल अवेयर और फिर भी वो और फिर भी वो बोलता है और फिर भी ज्ञान तो बांटता है लेकिन वो सही ज्ञान नहीं रहता है.
Yes, so what can we learn?
So my question is, why is it people get attracted towards him?
Because people who want a cheap thing, they go to the cheap person. जिनको सही ज्ञान चाहिए वो लोग सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनको सस्ता ज्ञान चाहिए वो लोग ऐसे ढोंगियों के पास पहुंच जाते हैं.
इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है ऐसा मतलब हुआ ना.
Because this is Kali Yuga and people in material world see, जैसे आप समझ लो कि पानी जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए आपको पूरा प्लांट लगाना पड़ता है, उसको ड्रिंकेबल वाटर करना है पीने का पानी बनाने के लिए. लेकिन अगर उसको कलुषित करना है, उसको अशुद्ध करना है, तो उसके लिए आपको खर्चा भी नहीं होता है, थोड़ा सा मिट्टी उठा करके डाल दिया उसके अंदर, तो फिर वो पीने लायक नहीं रहेगा बाद में पानी. तो इन द सेम वे पर्वत के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है लेकिन पर्वत से उतरना, नीचे गिरना आसान होता है. द सेम वे ये जो नदी का करंट होता है या नदी का फ्लो, उसके स्विम अगेंस्ट द करंट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है नदी के सामने की साइड तैरना, लेकिन नदी के फ्लो में बह जाना आसान होता है. इन द सेम वे मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक इच्छा करना, पाप में इच्छा करना या कंटामिनेटेड होना, दूषित होना, ये तो बहुत आसान होता है. बिकॉज वी वॉन्ट दैट, हमारी अज्ञानता के कारण हम तो ऐसे चाहते ही है. और फिर वहां पर हमें कोई ऐसा आदमी भी मिल जाता है कि तुम जो करना चाहे कर सकते हो, मैं उसके ऊपर स्टैंप मार देता हूँ कि तुम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग. बड़े बड़े आश्रम खोल करके बैठे हुए यहाँ पर भी, इंडिया में है, फॉरेन में है, बहुत सारे आश्रम है. वो लोग ऐसा कहते हैं कि मन को रोको मत, जो इंद्रिय भोग करना है करते रहो, और देयर इज ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो देयर आर सो मेनी सच चीटर्स, देयर आर सो मेनी सच चीटर्स. So there, people go there because they want something like this.
Yes, Prabhu.
More questions? Okay. So it seems that it is easy to understand, right? Nice book. Ishwar Prasad, Asan Pustak. No questions.
Actually, Prabhu, after doing Bhagavad Gita elaborately and Nectar of Devotion elaborately, I think this book has become quite little easy.
Yeah, therefore we kept on number 3.
Number, yes.
That has become very easy to understand.
Yes, please. Because the subject matter is somewhat similar only. Because we have done it in more detail previously, yes.
Yes. Okay, so we can go to Mantra 7 now. Okay, somebody can read translation.
जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी?
या यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव वा भूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता. दिस इज द श्लोक. इसका कनेक्शन इस तरह से मंत्र 6 के साथ कि मंत्र 6 में माँ भागवत की चर्चा हुई थी, जो उत्तम अधिकारी प्रकार का जो विचार करने वाला भक्त है उसका, माँ भागवत जो चेतन जिस चेतना में रहता है उस चेतना का वर्णन इस श्लोक में आता है. द कॉन्सियसनेस ऑफ महाभागवत मंत्र 7 में इसके विषय में चर्चा होती है. मेन थीम क्या होगा इसका कि जीवात्मा और भगवान वो क्वालिटी उनमें एक ही जैसी होती है,
उनका इंटरेस्ट भी एक होता है लेकिन क्वांटिटी दोनों में अलग अलग होती है. दे हैव द क्वालिटी दोनों में एक जैसी होती है. जैसे यहाँ पर लिखा है ना, उनमें चिंता कैसी, क्योंकि दे आर हैविंग द सेम क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड. भक्त जब भगवान की सेवा करते 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 उस अवस्था तक पहुंच जाता है, वो ट्रांसपेरेंस मीडियम वाया मीडियम बनता जाता है. जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनता जाता है उतना ज्यादा भगवान के गुण उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं. इस फीलिंग उसी प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं. तो कई बार देखें भगवान के गुण और भक्त के गुण ज्यादातर समान होते हैं. खासकर के अध्यात्म में गुरु के गुण और भगवान के गुण एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता उनमें. क्वांटिटी और क्वालिटी का मेन क्वांटिटी का फर्क रहता है बस. So quantity of the heat and light present in the sparks is not equal to the quantity of fire. जैसे दिन का जो होता है वो उसमें भी प्रकाश होता है और उसमें भी उष्णता होती है, लेकिन अग्नि अग्नि ही रहता है और तिनका ही रहता है. What you call spark is तिनका?
You were asking, Brahma?
Yeah, वो था तिनका स्पार्क को तिनका ही बोलते हैं.
तिनका तो स्ट्रॉ को, अच्छा पता नहीं बोलते, चिंगारी शायद बोल सकते हैं.
चिंगारी ठीक है, चिंगारी तो चिंगारी थोड़ा सा स्पार्क. सो महाभागवत द ग्रेट डिवोटी दिस इज वननेस इन द सेंस दैट He sees everything as the energy of the Lord. तो भगवान जो उस पर एकत्वम अनुपश्यता एकत्वम उनमें एकत्वम होता है. एकत्वम अनुपश्यता लास्ट जो वर्ड है इसमें एकत्वम अनुपश्यता. वो भगवान को सभी भगवान की सब शक्तियों को समझ सकता है. इसलिए एनर्जी और एनर्जेटिक में अंतर नहीं करता वो. There is sense of oneness. शक्तियों और शक्तिमान ये भगवान की शक्तियां भगवान से जुड़ी हुई ऐसा मानता है. और एकत्वम अनुपश्यत अर्थात प्रीवियस आचार्य को फॉलो भी करता है. एकत्वम वननेस शास्त्र चक्षु जो हमने सिखाया ना शास्त्र चक्षु, तो शास्त्र चक्षु के आधार से वो अनेक वस्तु को देखता है. ये उसका स्पेशल क्वालिटी होता है. तो It is mentioned in further Prabhupada. His individual living being were equal to the Supreme Lord, both quality and quantity. अगर जीवात्मा quality या गुणों के माध्यम से या quantity के माध्यम से अगर एक समान होते हैं, भक्त और भगवान या आत्मा और परमेश्वर दोनों एक समान ही है, तो फिर बद्ध होने का आवश्यकता ही नहीं. फिर बद्ध कैसे हो सकते हैं? अगर हम भी भगवान ही है तो हम भौतिक शक्तियों के प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? इसलिए एकत्वम का अर्थ ये नहीं होता कि हम मैं और भगवान एक ही हो गए, तुम भी नारायण मैं भी नारायण नमो नारायण, इसका अर्थ ये नहीं होता है. इसका अर्थ ये होता है कि उनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है और साथ साथ में क्वालिटी एक जैसी होती है, नॉट क्वांटिटी. दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड. पिछले मंत्र में इट इज ऑलरेडी मेंशन कि शक्तिशाली देवता भी भगवान की शक्ति को समझ नहीं सकते किसी भी तरीका से, तो फिर भगवान और जीव एक समान एक ही है ऐसा कैसे कह सकते? They don't think that way. There is spiritual oneness. So केवल उत्तम और मध्यम थोड़ा थोड़ा भगवान का ये जो एकत्व है ना वो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं. उत्तम और मध्यम कनिष्ठ नहीं समझ सकते. क्वालिटी सेम है भगवान की, क्वांटिटी अलग है. और उनका इंटरेस्ट जो है भगवान का जो इंटरेस्ट है और भक्त का जो इंटरेस्ट है वो एकदम सेम रहता है. जैसे हमने अग्नि का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण हो सकता है समुंदर का एग्जाम्पल, isn't it? भगवद गीता में था कहीं पर ऐसा कोई एग्जांपल था भगवत गीता में?
इधर रेफरेंस दिया हुआ है 7.5.
अच्छा 7.5 ऐसा लिखा आ गया वो ना लिखा होता तो पता पड़ता. व्हाट इज द रेफरेंस?
यही कि ब्रह्मांड पर के सभी जीव जिनमें पक्षी सरीसृप चींटियां एक्सेट्रा सम्मिलित है पर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है.
Yes. फिर फैमिली इंटरेस्ट एंड नेशन इंटरेस्ट. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके लिए अपने परिवार से वो फैमिली ओरिएंटेड, परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है. लेकिन ऐसा ही दृष्टिकोण किसी ऐसा व्यक्ति का भी होता है जो राजनेता होता है, कई बार वो राष्ट्र को देखता है अपने परिवार को, तो वो सेम इंटरेस्ट बिल्कुल वैसा होता है लेकिन वो पूरे देश के ऊपर अप्लाई करता है. फिर समुद्र का बूंद पानी वो भी खा रहा होता है, पूरा समुद्र भी खा रहा होता है. तो दिस इज वननेस. और क्वालिटी क्वांटिटी में हम सेम है नहीं है? कैसे नहीं है कौन बताएगा?
क्योंकि भगवान सभी जीवों को जानते हैं, हम सिर्फ हम अपने आप को ही जान सकते हैं. व्हाट इंडिविजुअल कैन नो हिज ओन बॉडी एंड नॉट रेस्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द मेन डिफरेंस. व्हेदर गॉड नोज एवरीवन, एवरी लिविंग एंटिटी.
मैक्सिमम एक जीवात्मा भगवान की सभी शक्तियों का 80% क्वालिटीज मेंटेन कर सकता है मैक्सिमम. फिर भी क्वालिटी में भी भगवान के एक समान तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती है कि वी कैन नॉट इवन फॉरगेट अबाउट क्वांटिटी. सो देयर आर मेनी सच अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से क्वालिटी और क्वांटिटी में अलग अलग है, और क्वांटिटी में हम भगवान के समान कभी नहीं हो सकते, क्वालिटी में एक समान हो सकते.
महेश भाई एक भगवत 13.3 में क्षेत्र ज्ञान चापि माम विधि सर्वश्रेष्ठ भारत. कृष्णा जो है वो सर्व सभी के क्षेत्र के स्वामी है. ही नोज अफेयर्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. पर जो लिविंग एंटिटी है वो सिर्फ अपने बारे में ही, अपने बॉडी के बारे में जानता है, पर कृष्णा सबके बारे में जानता है.
यस. सो दिस एग्जांपल ऑफ स्पार्क इज ऑलरेडी गिवन, जिसे हमने चर्चा किया. तो जैसे कई बार हम इसको आध्यात्मिक गुरु के रूप में बताते हैं, गुरु जो होता है वो स्पार्क के रूप में होता है, लेकिन उसमें उस स्पार्क में इतनी क्षमता होती है कि अगर वो सूखी घास के ऊपर गिरेगा तो उसको अग्नि बना सकता है. इट कैन बिकम, वो इग्नाइट फायर कर सकता है, इतनी शक्ति होती है उसका उस स्पार्क के अंदर. ये भगवान के जो महाभागवत भक्त होते हैं दे आर लाइक स्पार्क्स. फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो घास में से भी अग्नि को जन्म दे सकते हैं. सो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल फॉर द लॉर्ड. सो देयर इज गिवन एकत्वम अनुपश्यत. प्रभुपाद कहते लॉस एंजल्स में प्रभुपाद वाज सेइंग कि यू आर वन विथ गॉड क्वालिटेटिवली, नेवर क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी में कभी भी भगवान के समान नहीं सकते. तो नाउ देयर इज एकत्वम इंटरेस्ट. एकत्वम इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट में एक समान होना भगवान के साथ. तो इंटरेस्ट क्या है भगवान का? नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेक्चर में प्रॉपर से कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति भगवान के संतोष के लिए कर्म करने के लिए राजी हो जाए. देयर इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, देयर इज वननेस. वननेस का अर्थ ये भी होता है कि गया खत्म, हरा तोता हरे पेड़ में गया, गायब. नॉट दैट, दैट इज नॉट कृष्ण. एकत्व का अर्थ होता है वन मीन्स टू सेटिस्फाई कृष्ण. कृष्ण एकमात्र हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस है. दैट इज वननेस. एकत्व अनुपश्यत ईशोपनिषद वर्जन ऑफ एकत्व. हम भगवान के पार्षद है, अंश है, पार्ट एंड पार्सल. एंड देयर इज अनुपश्यत. अनुपश्यत का अर्थ होता है उसी दृष्टिकोण से हमें सब कुछ देखना चाहिए कि हम भगवान के अंश है एंड देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ पीस एंड इंटरेस्ट लिविंग एंटिटीज जो भी है वो एक महान परिवार के सदस्य है। भगवान इन सबके अहम बीजे प्रदा पिता, भगवान इन सबके परिवार के पिता है। इसलिए भगवान का जो इंटरेस्ट होता है और उनके पुत्र का जो इंटरेस्ट होता है ये दोनों सेम ही होता है, इंटरेस्ट में कोई क्लैश नहीं होता है। जैसे हमने मदभाव पिता मदभाव मागता भगवदगीता में हमने पढ़ा था, पिता मदभाव मागता, मदभाव मागता का अर्थ क्या होता है, भगवान के जैसा ही विचार, सेम इंटरेस्ट। तो सुप्रीम लॉर्ड वांट्स टू डिराइव प्लेजर आउट ऑफ देयर अफेक्शन इफ द चिल्ड्रन ओबे द फादर्स विल, अगर भगवान की इच्छा को बच्चे एक्सेप्ट करते हैं और पिता बच्चों को प्रेम देते हैं और ये दोनों चीज अगर आपस में परस्पर होती है देन फैमिली अफेयर्स रन स्मूथली, तब फिर परिवार में शांति बनी रहती है। द हाइएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरेस्ट तो वो क्या है, जब वो भगवान को अपना स्वामी माने, ये भगवान का इंटरेस्ट। फिर मोह और शोक का कोई अर्थ कोई कोई प्रश्न ही नहीं होता। दैट पॉइंट इज वन हैज टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि फैमिली अफेयर शुड रन स्मूथली। मैं वांसो जीव लोके, सारे जीव भगवान के अंश है, अपरियाम इस संयाम राइट, ये जीव जीव भूत महाभाव, तो ये जीव सब भगवान के अंश है और उनके तटस्थ शक्ति है और उनके परम पिता कौन है, सर्वयमने से कौन दिया मूर्त संभव अंध दिया और मैं उनका परम पिता हूं। अगर जो इस तरह से समझते हैं तो फिर ना बच्चे का शोक और ना ही बच्चे का फिर मोह। ये ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यशसी पांडव ये न भूतान्य शिशानी दृक्ष्यस्य आत्मनि थोमयि। ये ज्ञान प्राप्त करने वाला जो होता है वो शोक और मोह से मुक्त हो जाता है, वो मेरे है, दे आर डायरेक्टली अंडर मी। इसका क्या रिजल्ट्स क्या आता है ये प्राप्त करने से, कृष्ण को शरणागत हो सकते हैं, किसी प्रकार की मटेरियल मिजरीज रहेगी नहीं, भौतिक कष्ट सारे नष्ट हो जाएंगे, फिर शोक और मोह से मुक्त हो जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम इसको रिजेक्ट कर देते, अगर ये नहीं समझते हैं कि भगवान हमारे परम स्वामी है तो क्या होगा इसका परिणाम, हम गॉडलेस सिविलाइजेशन जो होगा, बड़े बड़े जो मॉडर्न जो पॉलिटिशियंस है उनके उनकी विचारधारा को मान्य करेंगे, फिर पूरा विश्व एंग्जाइटी से भर जाएगा, किसी भी समय हमारा मृत्यु होगा ऐसा हमेशा भय रहेगा और भौतिक प्रकृति के कठोर जो नियम होते हैं यू नो कोरोना सूर या डायनासूर या वट एवर सूर यू नो ये सारे असुर आपको परेशान करेंगे, then you are always under anxiety. In other words, the interest should be same of oneness. Chaitanya Mahaprabhu ka ichha tha ki sare jeev unke paas hai, manodishtam. So that is his interest. Isliye hamare jo 12 aims hai, usme ek aim hai, mood and mission of Srila Prabhupada. So hum Prabhupada ke mood aur mission ko samajna. Why we are doing this? What is the purpose of Krishna consciousness movement? ISKCON संस्था का पर्पस क्या है, कल 7 पर्पस जो प्रभुपाद ने बताया है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करना। इन अदर वर्ड्स जो भगवान से भूले हुए जीव है उन सबको भगवान के चरणों में वापस लाना, स्थिर करना, तो दिस इज द मेन पर्पस, दैट इज द ओनली सोल पर्पस यू नो ऑफ दिस मोमेंट टू रिवाइव कॉन्शियसनेस ऑफ दोस We have forgotten the Supreme Personality of Godhead. So, भक्त जो होते हैं उनके लिए सारे लोग जितने भी लोग हैं वो सब उनके अपने परिवार के सदस्य है, इसलिए he wants everyone to obey the same person, Supreme Father. और they follow Mahajanas. What is Mahajana? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक विष्णु बलि भैया सकी एकत्वम अनुपश्यत तो दे फॉलो दिस महाजनास. So, these are the, some of the points discussed in this. Prabhupada, in one of the lectures in 1972, Prabhupada talked about the same principle. He, just like in the legislative assembly, our representative MPs, they go and fight. So there is a deliberation, but that purpose is to serve the country. हमारी ओर से एमपीस जाते हैं और वो कर उनका उद्देश्य क्या होता है दे फाइट बट द पर्पज इज टू सर्व द कंट्री देश की सेवा करना. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है दे एग्री टू वर्क इन द सेम वे. जैसे प्रचेताओं को भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुम दोनों की तुम सब प्रचेताओं की आपसी जो कोऑपरेशन है एक दूसरे का सहयोग करके सेवा करने की इस भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम सब एक ही उद्देश्य के साथ जुड़े हो. क्या उद्देश्य है टू प्लीज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से. तो दिस इज द एकत्व अनुपस्थित सेम इंटरेस्ट भगवान की सेवा करना दैट इज सेम इंटरेस्ट दैट इज द पर्पज ऑफ. आप वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में यही होता है. बोलो वृंदावन में क्या होता है उनको और कुछ नहीं चाहिए उनका पूरे वृंदावन में. आप किसी गोपी को पूछो दे वांट टू प्लीज कृष्णा. आप किसी बंदर को पूछो भाई वो मक्खन खाने वाला बंदर उसको पूछो वो वांट टू प्लीज कृष्णा. एक हिरणे को पूछो दे वांट टू प्लीज कृष्णा. पशु पक्षी यहाँ कर यमुना नदी को पूछो दे वांट टू प्लीज कृष्णा. गोवर्धन को पूछो दे वांट टू प्लीज कृष्णा. पेड़ पौधे को पूछोगे दे वांट टू प्लीज कृष्णा. तो दैट इज एकत्व एवरीवन वांट्स टू सेटिस्फाई कृष्ण दैट इज द एकत्व एंड देन इफ यू डू दिस देन इट इज परफेक्ट दैट इज एकत्व अनुपश्यते दैट इज द समरी ऑफ दिस श्लोक. एनी क्वेश्चन विद दिस very nice no question okay so we can go further text 8 yeah ready translation
aise purush ko sahi janna chahiye कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है जो अदेधारी सर्वज्ञ अनिध्य शिराओ से विहीन शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है.
yes. This is mentioned here. Correction क्या है इसका पिछले श्लोक के साथ. पिछले श्लोक में उत्तम अधिकारी जो भक्त होता है जो एकत्व समझता है जिसका वर्णन सातवें श्लोक में था उत्तम अधिकारी का उसके संबंध में कुछ भगवान की क्वालिटीज का वर्णन यहाँ पर आठवें मंत्र में आता है. Some of the main qualities, some of the qualities of the Lord. The Bhagavan jana jate uttam adhikariyon ke madhyam se. To is mantra ka jo main theme hai, wo ye hai ki Bhagavan ka jo swaroop hai, unka jo form hai, wo divya hai, adhyatmik hai. Aur kisi bhi sadharan bhautik sharir dharan karne wale logo se या उनके गुणों से अलग है. उनके जो फीचर है एट्रीब्यूट्स है दैट आर अनलाइक दैट ऑफ एनी मटेरियली एम्बॉडीड एंटिटी. भगवान के शरीर और मनुष्य का साधारण मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ा अंतर है. जो कोई अगर ये मानता है कि ओ इज लाइक दिस तो नो इज लाइक अस ओनली इज नॉट लाइक अस इज शुद्धम दैट इज योर गिवन सपर यगाच्छु क्रम काय मव्रण अस्त्र विरे शुद्धम अपाप विद्धम कवे मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तोर्थान अनिंद्य का अर्थ होता है शीराओं से रहित नसों से रहित जैसे वी कैन गो इन डिटेल बट द मेन पॉइंट हियर इज दैट इज फ्री ऑफ वेन्स उनमें वेन नहीं है किसी तरह का सो दैट सब्जेक्ट मैटर हियर इज डिस्क्राइब्ड हमारी जैसे भौतिक शरीर धारण करने वाले भगवान नहीं है तो ऐसे श्रीमद भागवतम में है कहीं कहीं जगह पर भगवान के विराट रूप का जब वर्णन आता है उसमें आता है कि नदियां जो है वो उनकी वेन्स है बट भगवान के यहाँ ट्रांसेंडेंटल स्वरूप की बात हो रही है तो उनके शरीर के अंतर्गत कोई मांस हड्डी मज्जा वगैरह सब नहीं है ओमनीपोटेंट है ट्रांसेंडेंटल फॉर्म और अर्च वगैरह के रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं एंड दैट सफिशियंट है हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो ऑल दिस थिंग्स आर ये भगवान के डिफरेंट क्वालिटीज है एंड ट्रांसेंडेंटल फॉर्म का अर्थ होता है कि इस पर्टिकुलर श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं कि भगवान निराकार नहीं है भौतिक शरीर जैसा उनका शरीर नहीं है उनके शरीर उनके आत्मा में उनके मन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है हम और हमारी तरह प्रकृति के नियमों से बंधन में गिर करके वो शरीर धारण नहीं करते और उनका सच्चिदानंदमय उनका शरीर सो दीज आर सम ऑफ द वेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज अकायम अकायम मीन्स unembodied. Unembodied means उनके शरीर और उनके आत्मा भेद है ही नहीं मैं देहधारी हूं लेकिन वो देहधारी नहीं है क्यों ऐसे देहधारी क्यों नहीं है देहधारी नहीं इसका वो भूत है क्या नहीं निराकार है नहीं उनको आत्मा और शरीर अंतर ही नहीं तो उनको कुछ धारण नहीं करना पड़ता his body and soul are same. सच्चिदानंद विग्रह इसलिए और हर एक इंद्रियां दूसरे इंद्रियों का कार्य करती है जिसे हमने पहले एक बार बताया था आपको कि हाथ से वो चल सकते हैं और पांव से ग्रहण कर सकते हैं और हाथ और पांव से देख भी सकते हैं और आंखों से खा सकते हैं लाइक दिस तो ये हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में बहुत बड़ा अंतर है हम शरीरधारी है लेकिन भगवान हमसे इसलिए हम शरीर छोड़ देते हैं देयरफॉर व्हेन आई लीव दिस बॉडी बिकम डस्ट मिट्टी बन जाता है लेकिन भगवान शरीर छोड़ते नहीं है मेरे और शरीर में अंतर है भगवान के शरीर में अंतर नहीं है दैट इज मंत्र 8 और साथ साथ में क्या कहा गया है यथा तथा याथा तथ्यतः याथा तथ्यतः का अर्थ होता है भक्तों की इच्छाओं के आधार पर या सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले तो उनका जो मेन जो पर्पज है दैट इज टू फुलफिल डिवोटीज डिजायर बट इन फॉर्म ऑफ डेटीज भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं एंड भगवान अपने भक्तों की शरणागति के प्रपोर्शन में उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, सेवा एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या क्या प्राप्त होता है, इतना शरणागति होती है उसके प्रपोर्शन में हमें तीन चीज प्राप्त होती है। एक तो होता है क्वालिफिकेशन प्लस अपॉइंटमेंट बाय हायर अथॉरिटी एंड थर्ड लॉर्ड्स मर्सी। ये तीन चीज हमारे प्रपोर्शन में हमें प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा, फुलफिलिंग एवरीवन्स डिजायर। तो फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहते और यहीं पर छबाई हुई चीज चबाना चाहते हैं, तो भगवान उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं आते, वो आपकी इच्छा को पूरी कर देते हैं और आपको नरक के अंदर स्थान भी दे देते हैं। लेकिन भगवान का इच्छा ऐसा होता है कि डिवोटी शुड कम बैक होम बैक टू गॉड, तो उसके लिए भगवान अलग से सहायता करते हैं। तो दिस इज द डीलिंग्स बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी। तो
हरे कृष्ण प्रभु जी, यू सेड थ्री थिंग्स, क्वालिफिकेशन, अक्वायरमेंट फॉर हायर अथॉरिटी एंड हिज मर्सी। क्वालिफिकेशन इज टू नो, इज नोइंग हिम, दैट क्वालिफिकेशन,
या टू नो हिम, टू गेट मोर सरेंडर इन प्रपोजल, क्वालिफिकेशन एंड डिजायर, टू गेट मोर सरेंडर। ओके, तो एनर्जी वगैरह के रूप में वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी सेवाओं को सब तरीके से, अलग अलग तरीके से। So this is mentioned yatha tatyatah। So is tarah se fir bhagwan paribhu hai, paribhu ka arth kya hota hai, greatest of all, kyunki sare sansar mein jitne bhi jeevatma hai sab apni apni ichhaon ka list lekar ke inhi ke paas jate hai pura karne ke liye, akama sarvakama mokshakama, koi bhi ho, तिव्रेण भक्ति योगे नजेत पुरुष परम। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो उसको ये परिभू सब प्रकार के स्वामी, सब जीवताओं में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि लोग उनके पास जाते हैं और सर्वकाम मोक्ष काम, मायावादी लोग मोक्ष काम ही होते हैं, भौतिकवादी लोग सर्व काम होते हैं, ये सिद्धि योगियां सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहां उनके पास जाते हैं, तो ये सबको उनके पास ही जाता है, कोई कुछ भी चाहिए उनके पास जाता है। जो उनके पास जाते हैं भाग्यशाली, जो नहीं जाते दुर्भाग्यशाली है। इसलिए कहा गया है काम सर्व काम मोक्ष काम, आपके पास जो भी इच्छा है इधर उधर जाने के बदले उनके पास जाइए, ही कैन फुलफिल योर डिजायर। अगर आप किसी देवताओं के पास जाते हैं तो देयर इज अविधि पूर्वकम, देयर विल बी एक्सप्लेन इन द फ्यूचर इसी बुक्स में आएगा, रिलेटिव वर्शिप। सो इज अ ग्रेटेस्ट ऑफ परिभू स्वयंभू, वो स्वयंभू है, सेल्फ सफिशियंट। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, स्वयंभू सेल्फ सफिशियंट, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, स्वयंभू है, पूरा प्रकृति दिखाया था। देन बड़े बड़े असुरों को उन्होंने एक ही मिनट में खत्म कर दिया था कोई, और यहाँ तक कि वृंदावन में तो हथियार का भी उपयोग नहीं किया, वृंदावन में जब तक रहे एक भी असुर को हथियार से नहीं मारा, नॉट अ सिंगल वेपन ही यूज्ड, एक भी असुर को। अब देखे कोई भी असुर ले आओ, पुतना है, चुनावर्त है, बकासुर है, अगासुर है, केशी है, कोई भी लेके आओ, शंखचूड़ है, कोई भी, इज सेल्फ सफिशियंट, स्वयंभू। गोवर्धन उठा लिया पूरा, कितने नाखून की उंगली, हम तो क्या है वो श्लोक क्या है, गोवर्धन के लिए कहा जाता है, भगवान गिरधारी के स्तुति में क्या कहा जाता है, बाबा कोई श्लोक जिन्होंने श्रीनाथ जी के लिए जो श्लोक का उच्चारण किया जाता है वो श्लोक कौन सा है, गोपाल विग्रह के लिए,
हाँ
भक्ति शास्त्र में केवल 45 श्लोक का मेमोराइजेशन है प्रभु जी, ये श्लोक तो सिलेबस से बाहर से है। यस, क्या है श्लोक के क्रीड़ा कंदुक तामजन हित गोवर्धन गिरी वामस तामरस अक्षस्य, वामस तामरस अक्षस्य लेफ्ट हैंड से जिनकी आंखें भुजदंडम से पात हुआ, तो लेफ्ट उनकी आंखें एकदम जैसे पूरा मध पी करके नशे में हो ऐसे, वामस्तामर साक्षर भुजदंडम से पात हुआ और एक हाथ उन्होंने उठाया हुआ है और उठा के रखा हुआ है उन्होंने, इसको उठाया क्रीड़ा कंदुकताम ये ना, जैसे खेल खेल में कोई बच्चा गेंद उठा लेता है वैसे क्रीड़ा कंदुकताम ये ना, नितो गोवर्धनो गिरी गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा है अपने बाएं हाथ, बाएं बोलते क्या बोलते लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की सबसे कमजोर उंगली के नाखून के ऊपर उठाया है, और ऐसा नहीं कि ओ बहुत कष्ट हो रहा है भाई इंद्र बंद करो बंद करो बारिश यहाँ दम निकला जा रहा है ना, कुछ नहीं, बाकी सारे जो लोग थे वो लोग बोलते हैं सखा मधुमंगल ऐसे जो थोड़े जो मिस्टीवियस मित्र थे और चिंता मत करो हम लोग है ना कृष्णा चिंता मत करना गिरेगा नहीं ये गोवर्धन, हम लोग है ये लकड़ियां हम सपोर्ट के रूप में रख रहे तो चाहे गिरेगा तो हम लोग है डोंट वरी डोंट वरी आई एम देयर वी आर देयर विथ यू डोंट वरी, और मधुमंगल ने कहा यशोदा माता आप चिंता मत करो मैं मेरे मंत्र बोलता हूँ, एक्चुअली कृष्ण थोड़ी उठा रहा है ये गोवर्धन पर्वत तो मेरे मंत्र के कारण ही गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है, सो लाइक दिस कृष्णा को देयर इज नो बर्डन, जैसे वो ब्रह्मांड का फोटो कौन सा है वो साइकिल के पीछे लगाते हैं कुछ लोग, व्हाट इज दैट ब्रह्मांड उठाए हुए है ना पसीना पसीना हुआ है सिर पे लगा रखा है और ऐसे थका हुआ है भगवान बेचारा ऐसा पागल है कि वो सारे संसार का बोझ अपने सिर पे उठाता है पसीना पसीना हो गया, No, this is not स्वयंभू, भगवान is स्वयंभू, उनको किसी की आवश्यकता नहीं और उनको कोई नियम लागू नहीं होता, सेल्फ सफिशिएंट, रात्रि के मध्य भाग में गोपियों के साथ रासलीला किया, nobody can say sir you are doing wrong, no, I am the boss, there is स्वयंभू, शुद्धम अपाप विद्धम, अपाप विद्धम और शुद्धम, शुद्धम का अर्थ है मोस्ट प्योरिफाइड शुद्धम अपाप विद्धम, सबसे जैसे सूर्य जो है सूर्य उसको सबसे शुद्ध माना जाता है राइट, कि आप गंदे से गंदी जगह में भी सूर्य के किरण आते हैं, जैसे समझ लो कि कोई कोरोना ग्रस्त कोई एरिया है वहां पर सूर्य के किरण आते हैं तो क्या सूर्य को भी कंटामिनेशन इन्फेक्शन लग जाता है, सूर्य संक्रमित हो जाता है, अगर सूर्य संक्रमित हो जाता है तो संसार में सब जगह उसका प्रकाश फैलता है राइट, पर सूर्य इज मोस्ट प्योरिफाइड, वो तो गंदगी से गंदी जगह को भी शुद्ध कर देता है, जिसको आप हाथ भी नहीं लगाओगे उसको देखना पसंद नहीं करोगे, ऑब्नॉक्सियस थिंग्स जो होती है उसको भी शुद्धम, उसको भी अर्थात नीच से नीच पापी से पापी अधम से अधम कोई व्यक्ति होता है उसको भी शुद्ध कर देते हैं भगवान, शुद्धम पाप विद्धम, तो सूर्य की तरह शुद्ध करता है और उनके स्पर्श करने मात्र से किसी भगवान के उनका नहीं उनके नाम मात्र से उनके नाम का स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाता है, उनका चिंतन करने मात्र से उनका स्मरण करने मात्र से सब शुद्ध हो जाता है, सिंपली प्योरिफाइड, जैसे एक व्यक्ति एक ड्यूटी के घर पे कंप्लेन आती थी वो गोस्ट वाली कंप्लेन, यहाँ पर गोस्ट है प्रभु जी गोस्ट है, तो वो बार बार मुझे आते थे मुझे कहते थे, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है आप लोग क्या करते हो हाउ इट इज पॉसिबल, तो फिर एक दिन हम उनके घर पे मैं गया और मैंने उनको कहा कि
भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जो किसी भी कोने में गोस्ट है उसको हटा सकता है। तो मैंने पूछा आप अपना थोड़ा नाम बताओ, कहाँ कौन से कोने में आपको प्रॉब्लम होती है घर के, अपने उसी कोने में जाते चलो। देन आई वेंट टू ऑल द कॉर्नर्स, जहां जा कोने कोने में जाकर एंड सर जगह यू नो वी चैंटेड होली नेम्स, भगवान के दिव्य नाम से सब पवित्र हो जाता, सब कुछ पवित्र हो जाता। That is शुद्धम अपाप विद्धम। अपाप विद्धम का अर्थ होता है कि उनको पाप छू भी नहीं सकता। अपिचे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, सुदुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आता है। तो फिर दूसरा क्या है, ये भी सुप्राप यो नया, what is that?
हरे कृष्ण, मामी मामी पार्थ व्यपाश्रित, ये
मामी पार्थ व्यपाश्रित, ये पार्थ मेरे आश्रय में आने वाला जो भक्त होता है, ये पिशु पाप योनि आल्सो, जो पाप योनि वाला है, किरात हुनान और पुलिंद पुलकश आदिर शुंभा यवरान खसा दया, ये नेच पापा यदु पाश्रय आश्रया, भगवान के भक्तों की शरण लेने मात्र से इतने महान महान पापी जो किरात हुनान पुलिंद पुलकश आदिर शुंभ यवन खस, ये भी शुद्धयन्ति तस्मै, ये भी शुद्ध हो जाते हैं, पाप बुद्धम, उनको कोई पाप छू नहीं सकता। अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं भगवान कुछ लोग कुछ एक सेक्ट है वो ऐसा बोलता है कि भगवान कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए तो उन्होंने इतने सारे पाप किए थे, ये पाप की सजा भुगत रहे अभी, जैसे उनका पाप का कोटा खत्म हो जाएगा फिर वो भगवान वापस बन जाएंगे, फिर हम उनकी पूजा करेंगे। अगर भगवान को भी पाप का कोटा भुगतने के लिए नरक में जाना पड़े तो वो भगवान किस काम का, व्हाट इज दैट गॉड, इज अ पाप विद्धम, उनको पाप छू ही नहीं सकता। उनकी उनके आदेश को फॉलो करने के बाद युधिष्ठिर महाराज, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का रथ इसलिए गिर नीचे बैठ गया था क्योंकि उसने झूठ बोला। भगवान बहुत सारे प्रचलित है, ये फेमस है, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं आजकल, आप देखना मटेरियल वर्ल्ड में पीपल से कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है वो जमीन से ऊपर चलता था क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था। और भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम द्रोणाचार्य को बोलो कि अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मर गया लेकिन धीरे से बोला हाथी भी हो सकता है या मनुष्य भी हो सकता है वो मुझे नहीं पता, आधा सत्य था, अश्वत्थामा मर गया लेकिन मनुष्य अश्वत्थामा मरा है या हाथी का अश्वत्थामा वो नहीं पता। इवन दो ही न्यू दिस बट ही सेड हाफ ट्रूथ, अश्वत्थामा मरा लाइक दैट। तो जब भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि यू शुड डू दिस, यही एक उपाय है ऐसा बोलो, तो युधिष्ठिर एक सेकंड के लिए उन्होंने सोचा कि मैंने पूरी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला और आज एक युद्ध जीतने के लिए मुझे अर्ध सत्य का सहारा लेना पड़ता है या फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने ऐसा केवल सोचा, अभी तो बोला नहीं है कुछ, केवल सोचा, सोचने से ही सीधा रथ बैठ गया जमीन के ऊपर और फिर बोले कि अश्वत्थामा हत। लोग सोचते हैं कि बोलने के बाद रथ बैठा, नहीं, बोलने से पहले ही बैठ गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान जो कि सब प्रकार की मोरालिटी के स्वामी है, पाप विद्धम जिनको कोई पाप छू नहीं सकता, ऐसे भगवान के आदेश में थोड़ा शंका किया, हाउ मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, सो लाइक दिस एंड ऑटोमेटिकली दैट वाज डन। तो इसलिए पाप उनको कभी छू नहीं सकता, उनको कोई दूषित नहीं कर सकता, कृष्ण कभी कोई पाप कर नहीं सकते, प्रकृति के नियम उनको बांध नहीं सकते। और कभी कभी लोग कृष्ण को रासलीला के लिए क्रिटिसाइज करते हैं या कृष्ण को कोई एक्सट्रीमिस्ट बताते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कट्टर कट्टरवादी कट्टरपंथी
विल नॉट हैव यस सॉरी फॉर दैट. तो अभी अभी हमने चर्चा किया शुद्धम अपाप विद्धम. तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपरली कि चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो वो भगवान के कांटेक्ट में आता है तो वो शुद्ध हो जाता है. तुन्नम यतेत प्रभुपाद कहते हैं कि जो कोई भक्त जुड़ता है तो सीधा क्या है दूसरा अपाप विद्धम का अर्थ क्या है शुद्धम का अर्थ क्या है कि नष्ट प्रायशु अभद्रेशु कर दे भगवान हृदय का जो भी कचरा है वो सब नष्ट कर देते भगवान. भक्ति भवती नैष्ठिकी निष्ठा वाली भक्ति बन जाती है हमारी अगर हम अथा भगवान की सुनते निरंतर रूप से. कोई भी कोई जैसे गोपियां कोई भी एनीथिंग whoever came in contact with Krishna, they became शुद्ध. सब प्रकार का उनका जो contamination होता है शुद्ध हो जाता है. जगाई मदाई जैसे जगाई मदाई पापी भी भगवान के नाम से नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न स्वाम नाम. भगवान का जो नाम है वो पूर्ण शुद्ध है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त. भगवान का दिव्य नाम सभी तरह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न स्वाम नाम. भगवान का दिव्य नाम सब प्रकार से शुद्ध है. उनके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है नॉन डिफरेंट कृष्ण से बिल्कुल अलग नहीं है. सो और एक श्लोक भी जैसे हमने एनओडी में पढ़ा था वो श्लोक याद है किसी को संसद कामात क्रोधात भयात द्वेषात गोपियां काम से कंस द्वेष से भय से शिशुपाल द्वेष से. तो अलग अलग तरीके से सब जो लोग आते हैं भगवान की शरण में कंस शिशुपाल गोपियां यादु नारद पांडव इन सब की हमने चर्चा की थी ये सब शुद्ध हो गए सब के सब शुद्ध हो गए सब. सो दैट इज कृष्ण पाप विद्धम एंड वो सब जगह पहुंच सकते हैं cannot stop sunlight. उनको कहीं एक थोड़ा सा अवसर मिल गया तो वहां पर भी सनलाइट पहुंच जाएगी. एंड मायावादी लोग भगवान की इस चीज को नहीं समझ सकते. प्रभुपाद जी एक बॉम्बे में कन्वर्सेशन में बॉब कोयन करके जो है उसे कन्वर्सेशन में प्रभुपाद बता रहे थे कि कृष्ण से जब हम त्वाम सर्व पापे तो मोक्ष शिष्य और उनके शरण में जाने वाला सब पाप से मुक्त हो जाता है. सो to become a guru is not an easy task. You see, we have to take all the persons, all the poisons and absorb them. Sometimes he is not Krishna, there is a trouble. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, don't make many shishyas. But for our preaching work, we have to accept many disciples. Never mind we suffer, that's fact. Prabhupada ye keh rahe hai ki kabhi kabhi guru ko bhi ye risk lena padta hai ki शिष्यों को स्वीकार करें क्योंकि वो भगवान पवित्र कर देते शुद्ध पाप जला देते सारे. भगवान के भक्त गुरु होते वो भी आपके पाप जला सकते बट ऐसा कहा जाता है कि अधिक शिष्य नहीं बना चाहिए क्योंकि वो रिस्की होता है. भक्त को इसी ने कहा जाता है पतिता नाम पावन है जो शुद्ध करने वाले दीज आर ऑल डिवोटीज. जैसे जीसस क्राइस्ट ही टुक ऑल द रिएक्शन सबके पाप का बोझा उन्होंने अपने सिर पर लिया था. So, गुरु ये कर सकते हैं. That is Krishna's representative. He can do this. Krishna is a papa with them. इसलिए उनको कुछ नहीं होगा. It's a big fire. And gurus are small fire. तो बड़ा वाले इसके कनेक्शन वाले बताते हैं. We must be pure to approach Krishna. क्योंकि Krishna शुद्धम है. पूर्ण रूप से शुद्धम है. अपाप विद्धम है. इसलिए उनके पास जाने के लिए हमें भी शुद्धम और अपाप विद्धम बनना पड़ता है. जिस तरह से हमें अग्नि के अंदर प्रवेश करना हो तो हमें भी वो हाई टेम्परेचर को एक्सेप्ट कर पाए इस प्रकार का शरीर चाहिए, then only we can enter into fire, otherwise नहीं कर सकते. So we should give up sinful activities, that is the path of wisdom, and शुद्धम, और कृष्ण की सेवा करके हमें शुद्ध बनना पड़ता है. Then you can understand Krishna, you can realize Krishna, we can go near to Krishna. और कौन ये नहीं कर सकता है? Fallen, forgetting, living entity, जो भगवान को भूले हुए जीवात्मा है, you know, कम बुद्धि वाले, आदि आदि इंफॉर्मेशन वाले, या भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ग्रस्त होने वाले लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो एंड सॉरी फॉर द ब्रेक इन बिटवीन, बट एनी क्वेश्चन विद दिस? नो क्वेश्चन.
हरे कृष्ण प्रभु जी. श्रीला प्रभुपाद काफी बार नहीं, जरूरत पड़ने पर चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के विरुद्ध भी कर रहे थे क्या, मतलब फॉर प्रीचिंग पर्पस?
हाउ यू से दैट?
लाइक अभी जैसे कि ये बता कि अनेक शिष्य नहीं करने चाहिए, वन शुड नॉट हैव मेनी शिष्य, और श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, मतलब अभी जो आपने बोला, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट पॉइंट अगेन.
यस, सो एकत्वम अनुपश्चित, अनुपश्चित का अर्थ होता है कि इंटरेस्ट जो होता है उसका एकत्व. चैतन्य महाप्रभु का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को समझ करके उसके आधार पर गुरु शिष्य परंपरा के आदेशों को फॉलो करते हुए प्रभुपाद ही एक्सेप्टेड. प्रभुपाद से कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को, जैसे वो इज इट भगवद गीता में 18वें श्लोक में 18वें अध्याय भगवान कहते हैं कि वो इज दैट श्लोक, इदम ते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन, राइट? ऐसा कहा है कि इस ज्ञान को जो अभक्ताय है, जो ईर्ष्यालु है, उनको नहीं देना. तो उसके तात्पर्य में फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों अनंत जीवात्मा है, हम कैसे डिफाइन करेंगे ये कि ये भगवान का द्वेषी है या नहीं है. सो वी डू संडे फिश प्रोग्राम, वी डू पब्लिक लेक्चर्स एंड वी प्रीच. तो जो लोग ये रिस्क लेते हैं डिवोटीज, भगवान ने तो नहीं कहा ऐसा रिस्क लेने के लिए, लेकिन ये रिस्क लेते हैं भगवान के भक्त. So that is to fulfill the interest of the Supreme Lord. That is what Prabhupada said. Prabhupada, Mahaprabhu ki shikshaon ke vipreet nahi aate. He is not going against. Against ka arth kya hota hai? Jisme interest change ho jata hai. Bhagwan ka interest aur bhakt ka interest agar badal jata hai. So there is deviation. The Prabhupada had no deviation. Prabhupada was 100% following Chaitanya Mahaprabhu. And he was the person who served Chaitanya Mahaprabhu in the best of capacities, following the instruction of his Guru Maharaj. So, is that answers the question?
Yeah, now it is very much clear. So, he is not going against Chaitanya Mahaprabhu's instruction. The only thing, just to fulfill them, he is taking risk on his own self.
Yeah, means, agar koi problem aayega, तो जैसे हमने एक बार आईडीसी कोर्स में बता रहे थे कि गुरु आपकी ओर से भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि इतने सारे जीवात्माओं का ओर से मैं प्रॉमिस करता हूँ क्या कि ये लोग आगे जाके चार नियम का पालन करेंगे और 16 माला का जप रोज करेंगे. आई एम गिविंग प्रॉमिस. इफ वी डोंट फॉलो, अगर मुझसे 16 माला नहीं होती या मैं मास पिंडा आदि जो भी चार नियम है, ये चार नियम का मैं पालन करने में त्रुटि करता हूं, तो गुरु भगवान के सामने लज्जित खड़े रहते हैं. लज्जित इन द सेंस दैट ही इज अशेम्ड, एम्बरेस्ड भगवान के सामने, कैसे भगवान का सामना किया जाए, क्योंकि प्रॉमिस ब्रेक हुई, भगवान गुरु की प्रॉमिस ब्रेक हुई. भगवान तो ऑलरेडी बोले थे कि यू नो नीड टू डू दिस, बट यू आर टेकिंग रिस्क ऑन योर ओन, ओके देन डू इट. एंड ही डिड, व्हेन ही डिड देन, So like this, that is the point Prabhupada is trying to make here. So is that easy? Is that clear?
Yeah.
More questions?
Hare Krishna, can you please again repeat the connection between verse 7 and 8?
Okay. कनेक्शन ये है कि उत्तम अधिकारी जो मंत्र सेवानंद ने चर्चा की तो मैं उत्तम अधिकारी का जो सातवें मंत्र में जो बताई थी बात उनके द्वारा भगवान को जैसे समझा जाता है ऐसे भगवान के कुछ और गुणों का वर्णन आता है. इन अदर वर्ड्स भगवान के दिव्य स्वरूप जो साधारण देहधारी ऐसे नहीं होते उसका वर्णन आता है. मतलब 8 mentions some of the qualities of the Lord as he is known by the Uttam Adhikari mentioned in Mantra 7. Is that fine?
Okay, Prabhu. Yeah, thank you.
Yeah. So, अब सब भक्तों का जो learning experiences है वह ऐसे के माध्यम से हम ले रहे हैं. तो जो भी आपका डिस्कशन होगा दैट वी कैन टेक आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पॉइंट्स व्हिच वी कैन डिस्कस ऑन बट वी विल एक्सेप्ट दिस इन द पार्ट ऑफ एसेस इन द फॉर्म ऑफ एसेस. सो now any more questions?
Hare Krishna Prabhuji, learning experience jo hai wo sirf matlab class pe is lecture pe hi lena chahiye ki we can take reference of scriptures also.
Yeah, we can take
both now. It's not just class ke base pe jo understanding we ya sirf jo book hum refer kar rahe hain jaise abhi ye ish upanishad kar rahe hain sirf aise nahi na matlab we can make use of other scriptures like
yes yes
yeah
you can take that. So more questions? So we can take the next one. So this so far we have done 8.
Yes.
So हमारा जो ओवरव्यू हमने पढ़ा था उसमें क्या था 8 तक भगवान की इनकंसीवेबल शक्तियां द लॉर्ड इज इनकंसीवेबल एंड ओनली महाभागवत कैन नो देम. कृष्णा इज इनकंसीवेबल एंड Mahabhagavat can understand it. So, I repeat that same point again. Chauthe mein kya tha? Why such people unable to understand the Lord's position? Because he is beyond the material calculation and is thus known only by his devotees. And panchme mein humne charcha kiya tha. भगवान की अनंत शक्तियां अचिंत्य शक्तियां कॉन्ट्राडिक्टरी शक्तियां हैं उनकी कृपा के बिना कोई समझ नहीं सकता. फिर माँ भागवत का विजन कैसा होता है और माँ भागवत की चेतना कैसी होती है और माँ भागवत भक्त या एक उत्तम अधिकारी जो भक्त होता है वो भगवान को जो समझता है उस उन भगवान की कुछ और महत्वपूर्ण क्वालिटी जिसके विषय में 8वें श्लोक में 8वें मंत्र में चर्चा हुएगी. और नाउ मंत्र 9, 10, 11, 3 तो वो ज्ञान अविद्या और विद्या इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर. तो विद्या और अविद्या की तुलना है तो कनेक्शन इसका इस तरह से है प्रीवियस जो थीम है उसके साथ ये जो कनेक्शन क्या फिट कर क्या डिस्क्राइब करता है कि जो लोग मंत्र 8 में बताए गए जो ज्ञान है उस मंत्र ज्ञान उसको धारण नहीं करते और केवल ऐसा फॉल्सली ऐसा दावा करते हैं कि हम बहुत विद्वान है हमें सब आता है विद्या हमारे पास बहुत ज्ञान है ये भगवान को जानते नहीं है ऐसे. सो what happened to them? What is the fate of those who do not know or falsely claim to possess the knowledge of the Lord? जानते नहीं लेकिन केवल दावा करते हैं भगवान का, भगवान कृष्ण में, ऐसे लोगों के विषय में. तो वर्स 9-11 में क्या है, कल्चर ऑफ नॉलेज और निसंस, विद्या और अविद्या का संस्कृति. तो मेन थीम यहां पर क्या बताया गया है इस पर्टिकुलर श्लोकों में, जो पूरा अज्ञानी है, पूरा अज्ञानी जो पूरा भौतिकवादी व्यक्ति होता है, ऐसे पूरे अज्ञानी और पूरे भौतिकवादी व्यक्ति से ढोंगी अध्यात्मवादी ज्यादा वर्ष है, ज्यादा खराब है, कि जो लोगों को सही ज्ञान के नाम पे गलत ज्ञान प्रोवाइड करता है. सो दे आर वर्स्ट, दे आर कंसिडर टू बी वर्स, विद्या एंड विद्या. सो वी कैन, नाइस श्लोक, वी कैन रीड मंत्र 9.
जो लोग अविद्या पूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे. इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं.
अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यानुपासते ततो भूय इवते तमो विद्यायामृता. This is the Vedic mantra. This is mantra 9. विद्या और अविद्या, इसका आगे वाले 2-3 श्लोकों में इस विषय में चर्चा हुई है. In other words, ये जो मंत्र है वो आज के समय को बहुत ज्यादा एप्लीकेबल आप देख सकते हो. आज के समय में प्रभुपाद ने खुद लिखा है इसमें, मॉडर्न सिविलाइजेशन एडवांस कंसिडरेबली इन द फील्ड ऑफ मास एजुकेशन एंड रिजल्ट पीपल आर मोर डिस्टर्ब, मोर अनहैप्पी. मास एजुकेशन, लोग ये मटेरियल एजुकेशन को इतना महत्व दे रहे हैं. और ये आप बहुत ध्यान से देखोगे, आई मीन ऑफकोर्स अविद्या तो अविद्या ही रहेगी, चाहे कितना भी इसको ग्लोरीफाई करो. मटेरियल एजुकेशन के सिस्टम कितने खराब है, सो बैड. गुरुकुल सिस्टम जो हमारे प्राचीन काल की जो सिस्टम थी वैदिक सिस्टम, और उसके कंपेयर में मटेरियल सिस्टम, तो गुरुकुल सिस्टम कलयुग लोग, कलयुग चेला ने देखा कि गुरुकुल सिस्टम इज अ रूट, जहां से सबको वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, इसके ऊपर ही अटैक करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करना कर दिया, सबसे पहले तो उन लोगों ने इस गुरुकुल सिस्टम का सर्टिफिकेट या उसका जो पास आउट है उसको खाना पीना ही बंद कर दिया. तो उसको पैसा ही मिलता है, धंधा बंदा कुछ कर ही नहीं सकता है. तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, मटेरियल एजुकेशन को बढ़ावा दिया कि भाई तुम्हारे पास तो एमए बीए पीएचडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस प्रकार हमारी स्कूल का सर्टिफिकेट होगा तभी आप संसार में आपको लिटरेट माना जाएगा, आपको शिक्षित माना जाएगा, नहीं तो आपको इलिटरेट ही बताया जाएगा, आप अज्ञानी बच्चे गवार माने जाएंगे आपको. तो ये एक माइंड के अंदर इसको ठोपा गया. जब कोई भी चीज ठोपते जब वो जनरेशन चेंज करती है, वो एक जनरेशन से ऊपर चला जाता है वो ठोपी हुई चीजें, तो फिर जो फॉलोइंग जनरेशन होती है वो इसको रियलिटी मान करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं. एंड देन दैट यू कैन सी नाउ कि आज के समय में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, कि यू हैव टू गो एडमिट, गेट एडमिशन इन द स्कूल, और बॉयज एंड गर्ल्स हु केयर्स, सब साथ में बैठ के पढ़ो, और सब किसी को इसमें इंटरेस्ट है किसी को उसमें इंटरेस्ट है, नहीं, सबको एक ही साथ एक ही चीज को पढ़ना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अविद्या, सो कॉल्ड विद्या, मॉडर्न सिविलाइजेशन, एंड द रिजल्ट इज पीपल आर मोर अनहैप्पी. क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक एस्पेक्ट को ही हटा दिया, आध्यात्मिकता का जो मूल सिद्धांत था उसको ही हटा दिया. So then now they are struggling. Forgetfulness of the fact. What is the fact? What is Vidya? Krishna is the supreme person. Ishavasya is Vidya. Ishavasya jo hai wo Vidya hai. Lekin usko hataya to jo bacha wo hai Avidya. Ab is Avidya ye usko Vidya ko hi bula diya. To Avidya hi ban jayega baad mein. जो ज्यादा एडवांस एजुकेटेड सिविलाइज्ड लोग हैं वो इस संसार के लिए ज्यादा हार्मफुल या डेंजरस है, अलार्मिंग है देन दोज हु आर लेस एजुकेटेड मटेरियली. जो मटेरियली लेस एजुकेटेड लोग हैं वो लोग न्यूक्लियर वेपन बना करके संसार को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्यादा बुद्धिशाली ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं they are very expert in mass destruction. They can destroy everything. So they are making everything so miserable. See, corona ke karan, aaj, you know, I was telling somebody pichle kuch dino ke saath baat kar raha tha. Maine kaha dekho, hamare maine apne lifetime mein ek earthquake jo life mein kabhi anubhav nahi kiya tha. To ek earthquake ka bhi ek zamana tha. To earthquake mein humne ek mahina dekha. अर्थक्वेक एक्चुअली कैसा होता है. तो फिर आया ऐसे लॉकडाउन, ये पूरा इंटरनेशनल ग्लोबल लॉकडाउन, इसको लाइफ में कभी देखा नहीं था और ना ही मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं देखा ये ग्लोबल लॉकडाउन. सो वो भी हमने चलो देख लिया. अभी मैंने अपनी लाइफ में भी कोई वॉर नहीं देखा है, तो वॉर के भी समाचार आने लगे कि भाई वॉर कभी भी हो सकता है. So like this big things which we have not seen, but we are seeing this, the mass destruction. Ghar ke andar pade rehna. People are more unhappy because of avidya. Gross sense gratification, Moodha, Vedavadarata, mundane educators, jo Vedo ko tod phad karke bas sikhate. Maya aparta gnana. जो लोग सेल्फ मेड गॉड्स है, सेल्फ मेड गॉड, भगवान खुद ही भगवान बन गए, ये चीटर्स धोखेबाज, सो दे कॉल इट. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ देम. सो दैट इज अविद्या. अविद्या मीन्स डेंजरस. अविद्या जता माया का वैभव तोमार भजने बाधा. अविद्या ये माया का वैभव है. हम चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, विद्या रविलास काटा नुकाल परम सहसे आमी. मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत यत्न करके, बहुत रात रात जग जग करके, परम साहस करके मैंने विद्या प्राप्त किया, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की. परम सहस आमी विद्या रविलास अविद्या जैसा माया का वैभव, ये माया का वैभव निकला और से ज्ञान होइलो शेलो, से विद्या होइलो शेलो. ये तो होलो शेलो, शेलो का अर्थ नकली निकला. ये तो पूरा सब जितना इतने साल पढ़ा लिखा ये तो पूरा नकली निकला, कोई काम का नहीं निकला. माया का वैभव निकला, माया का वैभव तुम्हारा भजने बाधा, और आपके भजन में तो बाधा क्रिएट किया. इतना साल तो पढ़ा नहीं, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए चक्कर काटना शुरू कर दिया और परिणाम यह आया कि आपकी सेवा के लिए तो टाइम ही नहीं बचा. फिर तुम्हारे भजन में बाधा. अनित्य संसार मोह जन्म आया, इस अनित्य संसार में मुझे मोह जन्माता है, इल्यूजन क्रिएट करता है. मैं हूं, ये मेरा है, मेरा बैंक बैलेंस है, लाइक दिस. जीवे के कराए गाधा, और वो जीव को गधा बना देती है, मूड बना देती है, मूड गधे की तरह. वही गधा वो बन करके संसार का बोझा उठा करके चलते रहते. माया अपृत ज्ञान. तो इस तरह से दिस इज द प्रॉब्लम विद द अविद्या. विद्या व्हेन इट इज मिसगाइडेड, यू नो, आध्यात्मिकता को जो लोग कवर करके बताते हैं, दैट इज मोर डेंजरस. इज अ काइंड ऑफ कोबरा डेकोरेटेड विद अ वैल्यूएबल ज्यूअल. क्या बोलते हैं उसको, नाग के माथे पे क्या होता है,
मणि होती है प्रभु जी, मणि।
तो नाक के माथे पे जो मणि होता है वो मणि अगर आप लेने जाओ तो वो साधारण मणि से ज्यादा भयानक है। क्यों? क्योंकि वो कोबरा के सिर पर है, वो आपको खत्म नहीं कर सकता। सो इन द नेम ऑफ एजुकेशनल एडवांसमेंट दैट इज वर्स देन दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रोस स्टैटिफिकेशन। Big institution, technology, how a motor car can move, गाड़ी कैसा चलती है, airplane कैसे चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी का manufacturing, you know, but these are all avidya. There is no educational institutes, ऐसा कोई शैक्षणिक संस्था नहीं है कि airplane चलाती है, वो सब सिखाने वाले बहुत से airplane कैसे चलता है, लेकिन आत्मा कैसे चलता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है, इसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। जस्ट इमेजिन, नो इंस्टीट्यूशन ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सच अ बिग यू नो वंडर, अविद्या, दिस इज निसाइंस, दैट इज व्हाट वी कॉल, हम एडवांस हुए, प्रॉस्पर हुए, विद एजुकेशन प्राप्त हुआ, और उसका परिणाम क्या आता है, अंधम तमह अंधेरे में गिना, अंधम तमा प्रविशंति ये अविद्या उपासते, आगे वाले श्लोकों में इस श्लोक में अंधम तमा प्रविशंति, अंधकार में गिरते हैं, एवरीवेयर दिस इज ह्यूमन डार्केस्ट रीजन, डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी, राइट। भगवत भक्ति इनस्य जाति शास्त्रम जपस तपह अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य, अगर किसी में भगवत भक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसकी जाति, उसका शास्त्र ज्ञान, उसका जप, उसका तप, जो कुछ भी वो करता है, शास्त्र का उच्चारण वगैरह जो भी, वो कैसा है, मंडनम लोकरंजनम, वो लोगों को दिखावा, अप्राणस्य देहस्य, जब मृतक बॉडी को श्रृंगार किया जाए तो उसका वैल्यू क्या है, लोगों के आनंद के लिए ही होता है ना, इट्स जस्ट फॉर पीपल, उनके प्रसन्नता के लिए, वो उसको क्या बोलते हैं, वो शोरूम में जो खड़ी होती है पुतलियां, उसको क्या बोलते हैं,
मैनिक्विन,
या तो वो उनको कितना भी श्रृंगार किया जाए, कितना भी सुंदर उनको सजाया जाए, हो सकता है कि बिल्कुल you know, वो बहुत फेमस है ना, क्या नाम, सारे विश्व के सबसे सब बड़े बड़े प्रसिद्ध शहरों में है, मैंने न्यूयॉर्क में देखा था, लंदन में देखा था, तो बहुत सारी जगह देखा ये, बट यहाँ पर जो पुतले खड़े हैं उसका वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू, यूजलेस, वो कुछ नहीं कर सकते, लोकरंजनम, बस लोग आएंगे खुशी होकर चले जाएंगे, दैट्स इट। सो ये ज्ञान, जाति, शास्त्रम, जपस, तप, कुछ इज ऑल यूजलेस। चैतन्य महाप्रभु ने यही चीज वल्लभ भाईचार्य को कहा था कि वल्लभ भट्टाचार्य, तो भगवान ने रूप गोस्वामी और वल्लभ अनुपम का पहचान कराया था वल्लभ भट्टाचार्य से, मध्य लीला में ये चीज आता है, तब भगवान इस विषय में बताते हैं यूजलेस। ये जो पैचवर्क ऑफ एक्टिविटीज, उसको पैचवर्क बोलते हैं, पैचवर्क ऑफ एक्टिविटीज मेंट टू कवर, ये हमारी वास्तविक विद्या नहीं है। परिणाम क्या आता है, इसका अंत तो एक ही आता है, संसार में कष्ट भुगतना, दुख भुगतना, दैट इज ओनली आउटकम ऑफ दिस अविद्या, this is the outcome of avidya. So there is maya aparita gnana, aur dusra ek tarika kya hai, aparita gnana, jiska humne already charcha kiya tha, to dhongi hai, atheist demons, self-made gods jo apne aap ko bhagwan batate hai, ya kisi dhanwan vyakti ko uska mandir banate, uski puja karte hai, या फिर ऐसा मानते कि भगवान मर गया है, भगवान तो माया है, दे आर ऑल माया अपरत ज्ञान है। भक्तिवान ठाकुर बहुत अच्छे से मैंने वही चीज जो श्लोक हमने बताया आपको दिस थिंग और वेदवाद रहता सपोज फॉलोअर्स ऑफ द वेदास सपोज फॉलोअर्स वेदास सपोज मीन्स वो लोग वेदों का पालन करते हैं केवल इंद्रिय भोग करने के लिए नथिंग एल्स। अपने आप को बहुत विद्वान बताते हैं लेकिन उनको वेदों का कुछ नहीं पता शास्त्र का उद्देश्य क्या है। उनको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको केवल स्वर्ग का इंटरेस्ट है। वेदवाद रहता एरर आल्सो कम्स अंडर अविद्या। वैदिक साहित्य का गलत अर्थ निकालते हैं पुराणों की निंदा करते हैं वो लोग और अज्ञान में गिरते जाते हैं आचार्य की अवहेलना करते और फिर अपने आप को आचार्य घोषित करते हैं। दीज आर वेदवाद रहता पीपल एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अविद्या। दिस इज अविद्या। So these are the subject matter of 9. So anybody has any question with this?
Hare Krishna Babuji.
Yes.
Prabhuji, avidya jo bol rahe hain ye thoda samajh mein nahi aa raha hai.
Kaun sa?
Avidya bol rahe hain na?
Avidya.
हाँ ये समझ में नहीं आ रहे
तो विद्या को कहा जाता है ज्ञान और उसके विपरीत जो होता है उसको बोलते हैं अज्ञान। देयर इज विद्या एंड अविद्या। और विद्या है जो ईशावास्य अर्थात भगवान को भगवान सबके स्वामी है इस मुख्य बात को समझना देयर इज विद्या। और अविद्या वो ऐसी चीज है कि जो भगवान को अविद्या ऐसी चीज होती है जो भगवान को साइड में रख देते हैं और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए शास्त्र का सहारा लेते हैं और कभी कभी शास्त्र का भी त्याग कर देते हैं आचार्य का भी त्याग कर देते हैं या फिर मूढ़ा की तरह भौतिक विद्या जो मटेरियल एजुकेशन है उसको बढ़ावा करते हैं। दैट इज ऑल अविद्या। संसार में चाहे प्रभुपाद ने अभी पिछले श्लोकों में बताया था कि अगर आपको विद्या प्राप्त करनी है तो आपको कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा भगवान को समझना पड़ेगा। संसार में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है लेकिन ये इंस्टीट्यूशन में आपको सब सिखाया जाता है प्लेन कैसे चलता है गाड़ी कैसे चलती है कैसे बनाए लेकिन आत्मा कैसे शरीर से बदलता है उसका कहीं पर नॉलेज नहीं है। दैट इज अविद्या। कितनी भी डिग्री आप ले लो चाहे एमए पीएचडी बीटेक एमटेक आईआईएम क्या क्या उसका एमबीए फिर मास्टर्स डॉक्टरेट ये एमडी एमबीबीएस वो भी डिग्री ले लो एनी मटेरियल डिग्री जब तक आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं आता है तब तक वो सारे ज्ञान अविद्या के अंतर्गत उसको फॉलो करने वाले अंधम तमहा प्रविशन्ति ऐसे लोग अंधकार में गिर जाते। सो विद्या एक ही है। क्या विद्या? ईश्वर को समझना और उनकी आदेशों का पालन करना दैट इज विद्या। और उसके अतिरिक्त उसके उनके विपरीत जो है वो है अविद्या। इज दैट क्लियर? इज इट हेल्पफुल?
जी
हरे कृष्ण। प्रभु जैसे अविद्या की और ये बात कर रहे थे आप तो मतलब जैसे काफी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जिनको जो मतलब जैसे भारत में ये देखा जाता है मोस्टली कि लोग थियोरेटिकली जानते हैं मतलब किसी को भी पूछो आत्मा के बारे में तो जानते हैं थियोरेटिकली कि हाँ आत्मा होता है मगर सिर्फ वो मतलब वो सुपरफिशियल नॉलेज होता है। और जैसे कि प्रभु बता रहे थे स्मशान वगैरह की जब किसी का मृत्यु होता है तब उनको मतलब उसे रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये तो आत्मा छोटे छोटे चली गई उसको नया शरीर मिलेगा वगैरह मगर वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतरते नहीं है। तो ये लोग कौन सी कैटेगरी में दे आर ऑल्सो इन अंडर अविद्या और
वेल दे आर इग्नोरेंट ऑफ कोर्स but they are not cheaters. They are ignorant, but they are not cheaters. वो लोग वेदवाद रत्ता में आ सकते हैं, अपने आप को विद्वान बताते हैं, लेकिन उनका पर्पस कई बार ऐसा होता है, they can come under cheaters, वेदवाद रत्ता, कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनको भगवान का कोई लेना देना नहीं, इनको तो इंद्रिय भोग से लेना देना होता है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज उनके पास हो सकता हो, बट फिर भी देयर मेन सोल पर्पस इज टू एंजॉय देयर सेंसेस, सो दे आर वो दे मे नॉट बी अंडर डायरेक्टली अंडर मूढ़ास। मूढ़ा तो क्या होता है कि वो पैचवर्क ऑफ एक्टिविटीज टू कवर मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये भौतिक अस्तित्व की दुखों को छुपाने का प्रयास करते हैं, बोलो मूढ़ लोग होते हैं तो डेड बॉडी डेकोरेशन वाला, दैट इज मूढ़ास। और वेदवाद रहता तीन प्रकार के है अविद्या के कैटेगरी, एक होता है मूढ़ा, दूसरा होता है वेदवाद और तीसरा होता है माया अपरतज्ञान, ये तीन कैटेगरी है अविद्या की। एक कैटेगरी मूढ़ा की है जिसकी सब कैटेगरी में आप क्या लिख सकते हो कि हार्ड वर्किंग गधे, उसमें स्टूपिड्स वो लोग आप रख सकते हो, और ऐसे लोग जो बहुत विद्वान होते हैं मटेरियली लेकिन कोबरा जैसे होते हैं, मणि धारण करने वाले, मार सकते हैं आपको, और इनसी यू नो, और मूढ़ा जो होते हैं उनकी कैटेगरी में उनका वो मंडनम लोक रंजनम, वो उनका प्राण से डेड बॉडी का डेकोरेशन, या फिर अपने अपनी दुखों को छुपाने वाले, दीज आर ग्रोस सेंस ग्रेटिफायर्स, ये स्थूल मूढ़ा जैसे। और वेदवादरता का जो हमने आपको बताया, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं लेकिन वेद का उपयोग वो शास्त्र स्वर्ग के लिए करना चाहते हैं, और अपने आपको बहुत विद्वान बताते हैं लेकिन मूल उद्देश्य को छुपा देते हैं, पुराण आचार्य इन सबकी निंदा करते हैं। सो दिस इज सेकंड कैटेगरी, एंड थर्ड कैटेगरी इज माया अपरित ज्ञान। तो माया अपरित ज्ञान में क्या है, असुर, फिर सेल्फ मेड गॉड, फिर नास्तिक या फिर कोई धर्मवान व्यक्ति, सो ऑल दिस थिंग्स दे कम अंडर माया अपरित ज्ञान। सो दीज आर थ्री मेन कैटेगरीज।
यस थैंक यू। तो प्रभु जैसे यहाँ बताया है कि जो वेदवाद रहता लोग हैं या जो सो कॉल्ड नॉलेज है, दे आर मोर डेंजरस राइट, देन द फूल्स। तो मतलब क्या ये भी सही नहीं है कि जैसे काफी लोग हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई व्यक्ति है जो परिवार का मतलब हेड है, वो फूल है, उसको भी पता नहीं है, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने परिवार को उन लोगों को सही रास्ते पे ले जाए, मगर वो अपने बच्चों को वही जैसे मतलब आप बता रहे थे वही कन्वेंशनल स्कूलिंग में डालता है, उनको वही सेंस ग्रेटिफिकेशन में उसने खुद भी एक्सपीरियंस किया है उनको उसी में वो डालता है, तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस राइट।
दैट इज ऑल्सो डेंजरस, खुद को पता है कि उसको कुछ इतने जन्म में वो आज तक बूढ़ा हो गया, अभी तक वो सही मार्ग चुन नहीं पाया, सभी सही शांति प्राप्त नहीं कर पाया, और वो उसी मार्ग पे अपने बेटे को भी चला रहा है कि बेटा तुम भी मेरे मार्ग पे चल, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा मार्ग का, सो देन इज ऑल्सो स्लॉटरिंग हिज ओन सन हिज ओन डॉटर, वो भी स्लॉटर कर रहा है, सो दैट इज हिज प्रॉब्लम, दे आर हार्ड वर्किंग लेबर स्टूपिड, that may come under somewhat mudas or sometime they may come under vedavada.
Okay.
So more questions?
Yes.
Yeah, maybe.
अब उसको भी नॉर्मल जो एजुकेशन जो देते हैं वो भी दिला रहे, तो वो भी उसमें
उसके कनेक्शन में मैंने थोड़ी देर पहले चीज बताई थी कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनको गुरुकुल सिस्टम से एजुकेशन दें, अगर किसी भी कारण से वो अभी अवेलेबल नहीं हो या अभी आपको नहीं पता है या यू आर नॉट मच कन्विंस्ड प्रॉपरली, या फिर अभी वी डोंट हैव दैट अल्टरनेटिव और इन एनी अदर रीजन व्हाट्स एवर रीजन. तो देर इज वन ऑप्शन प्रभुपाद हैज सेड इन द पास्ट, पिछले कुछ लोगों ने प्रभुपाद ने ये चीज बताया था. क्या चीज? कि उनको आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, फिर भले वो भौतिक चीज को ग्रहण करता है, दैट इज लेस इम्पोर्टेंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर उसका मार्क कम आता है तो चलेगा, स्कूल में कॉलेज में मार्क कम आता है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट उसका परफॉर्मेंस स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत अच्छा होना चाहिए. इस बात से प्रिंसिपल को अच्छे से समझना चाहिए, दैट इज एक्सेप्टेड. ऐसा मटेरियल एजुकेशन एनी वे वो तो एक्सपीरियंस से ही, लोग पढ़े लिखे लोग यू नो, ऐसे कहावत भी है इफ यू रिमेम्बर, कि जो ऐसे लंबा कहावत था, आई मीन लंबा चीज आई फॉरगॉट, कि जो थोड़ा पढ़ते हैं उनको कुछ ऐसी कुछ नौकरी मिलती है, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छी नौकरी अच्छा खासे गधे बनते हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग नेता बनते हैं, दे बिकम लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, दे बिकम पॉलिटिशियंस.
Yes, प्रभु. ये अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में इन वेरी फनी वे ही
एक्सप्लेन,
तो उन्होंने बताया था कि जो इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, जो एकदम टॉप टॉप होते हैं, वो मतलब छोटी मोटी नौकरी करते हैं.
Yes.
और जो मतलब उनके मतलब जो बाकी जो सेकंड कैटेगरी में होते हैं, जो एमबीए या मतलब मतलब बीकॉम एमकॉम वगैरह करते हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कंपनी के मालिक बनते हैं, और वो इंजीनियर्स को हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं. फिर वो बता रहे थे कि और फिर जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो मतलब कुछ करते नहीं है, मतलब जो मतलब कैसे भी करके वो बैठ गए, वो मतलब वो लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और वो लोग इनको मतलब जो ये जो ये एमबीए और जो कंपनी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो खुद की कंपनी के, वो उनके अंडर में आते हैं आईएएस ऑफिसर्स के, वो मतलब टैक्स भरते हैं उनसे, उनके जीएसटी करते हैं वगैरह. और जो बिल्कुल भी बेकार होते हैं, कुछ नहीं करते, मतलब जो मतलब एकदम से मतलब फेल होता है, और मतलब वो मतलब जबरदस्ती पास हुआ है कैसे भी करके, वो नेता बनते हैं और आईएएस ऑफिसर उनके अंडर में आते
हैं. ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस हमारी सिस्टम है, कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो आईएएस ऑफिसर्स और एंटरप्रेनर्स और क्या बोलते हैं उसको, ये इंजीनियर्स, सबको वो कंट्रोल करने वाला, वो राजा होता है. तो दिस इज अवर सिस्टम ऑफ अविद्या. तो इसलिए आई एम नॉट सेइंग दैट कि सब अपने अपने बच्चों का विड्रॉ करवा लो स्कूल में से, नॉट दैट. अगर वो उसके सामने आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेट इट बी, दैट इज पर्सनल चॉइस, बट कम से कम उनको ये ईशावास्य का जो ज्ञान है, विद्या जो भगवान के विषय में ज्ञान है, वो देना, दैट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो देना चाहिए. क्योंकि इसको आप स्पिरिचुअलिटी, केवल स्पिरिचुअलिटी मत समझना कि हम तो आध्यात्मिकता ही है, इसको आप ऐसा समझो कि एक्चुअल एजुकेशन ये है. आप जब बच्चे उम्र में छोटे होते हैं तो उनको एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन देना ये माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको एजुकेशन क्या देना ये भी तो माता की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी है. और वो एजुकेशन में द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज इच्छावास्य अंडरस्टैंडिंग. तो ये ज्ञान आपको बच्चों को देना चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, देन यू आर डूइंग नो प्रॉब्लम. दैट इज द आइडिया. यू अंडरस्टैंड? आई मीन यू फॉलो, आई मीन आई हैव Believe they answer your question.
Yes, Prabhu. Yes. Thank you.
Yeah. So, more questions?
Yeah, Prabhu. तो जैसे मैं मतलब काफी भक्तों से और मेरे कुछ कलीग से भी ये discussion कर रहा था. I don't know whether this is the right platform. मगर अगर मतलब if you think we can discuss this separately also, homeschooling in the United States versus homeschooling in India. जो मतलब जो उनके फेडरल लॉ में है एक्चुअली, ये होम स्कूलिंग इज इन द फेडरल लॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि यहाँ पे कुछ मतलब 1% भी कुछ भी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट में. और जबकि यूएस गवर्नमेंट में ये भी देखा गया कि किस तरह से क्राइम रेट, मतलब स्कूल से क्राइम शुरू होता है, and then the parents feel that their child is not safe there. And एक वो भी रीजन है जो मतलब जो लोग भक्त नहीं है वो रीजन से करवाते हैं, और जो भक्त है उनको तो ये सुविधा है क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया है. तो मेरे कुछ काफी फ्रेंड्स है जो भक्त है और वो लोग होम स्कूलिंग करवा रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी इजी, और उनके बाद उनके बच्चों का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होता है वहां पे.
Yes, this is there. We have seen this. ये होता है एंड यही कल्चर हम हमारे इस्कॉन के सारे भक्तों कम्युनिटी भक्तों के अंदर ये लाना चाहते हैं. वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर स्केल इन अहमदाबाद. अहमदाबाद में इतने सारे कम्युनिटी डिवोटीज है, इन सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबके अंदर ये कॉन्सेप्ट को अगर ज्यादा महत्व मिले तो सब अपने अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस और अलर्ट होकर के ये ईसावास्य प्रिंसिपल को सिखाने के लिए मेहनत करेंगे. कई बार माता पिता ऐसा सोचते है बोले उसका बाप ही अभी तक भक्त नहीं बना, वो अपने बेटे को क्या भक्त बनाएगा. मैं खुद ही अभी भक्त नहीं बना, मैं अपने बेटे को क्या भक्त बनाऊंगा ऐसे. लेकिन ये इस तरह से अपने हम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते. आपको बाप बनना आता नहीं था, बाप बने क्यों. सो देन नाउ यू हैव बिकम फादर, सो दिस इज योर ड्यूटी टू टीच योर सन व्हाट इज गिवन इन शास्त्र. अगर आपको नहीं आता है तो आप खुद सीखो और सिखाओ, और या आपको जितना आता है उतना सीखो, जितना आता है उतना सिखाओ. एटलीस्ट इट इज योर ड्यूटी टू टीच योर सन और डॉटर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस.
हरे कृष्ण प्रभु जी. ये जो कॉन्सेप्ट जो है वैदिक एजुकेशन या गुरुकुल एजुकेशन का, अगर बच्चों में डायरेक्टली हम डालते हैं तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता. मतलब किड्स आर लाइक दे आर मोर प्रॉम्प्ट, वो उनको सही लगता है. इनफैक्ट जस्ट एन एग्जाम्पल, बच्चों का क्लास जो मैं ऑनलाइन लेती हूँ गुरुकुल का, तो उसमें यही टॉपिक था लास्ट संडे को, एंड दे वे ऑल लाइक उनको ऐसा लगा कि मॉडर्न एजुकेशन तो कुछ है ही नहीं, इन द नेम ऑफ एजुकेशन इट इज रियली नथिंग. बट क्या इसका वही तो, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा फीलिंग नहीं हो कि भाई हाँ जो डिवोटीज है वो तो समझ सकते हैं, बट उनको ऐसा नहीं कि हम उनको मार्क से भटका रहे हैं या वी आर प्रमोटिंग गुरुकुल.
आई टेल यू एग्जाम्पल ऑन दैट कि प्रभुपाद को एक बार प्रश्न पूछा गया था एक टीवी स्टूडियो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक टीवी स्टूडियो में इनका इंटरव्यू था प्रभुपाद का. एंड दोस डेज उन लोग का इच्छा ऐसा था पत्रकारों का कि प्रभुपाद क्रिटिसाइज करे किसी को. तो उन्होंने क्या किया कि तुम्हारा मुस्लिम धर्म के लिए क्या मानना है, क्रिश्चियन धर्म के लिए क्या मानना है, यू नो दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. Then Prabhupada kept on answering only one thing. Prabhupada एक ही चीज को दोहराते हैं, एक ही चीज बताते हैं कि मुझे नहीं पता. I mean, I don't want to comment on that. Rather, what he say? Prabhupada says, सत्य क्या है? I tell you. धर्म सही धर्म क्या होता है? जो आपको भगवान को प्रेम करना सिखाए, वो सही धर्म माना जाता है. And then now you have to decide yourself. This is the truth. So we generally don't criticize. हम criticize करना ये हमारा काम नहीं है. हमारा काम क्या है? सत्य दिखाना. हम सत्य दिखाएंगे. सत्य क्या है कि कृष्ण का जो नॉलेज है, ईसावास्य ज्ञान है बच्चों के लिए, दैट इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट. अब बच्चे खुद ये तय कर लेंगे कि जहां पर ईसावास्य नहीं आता है वो ऑटोमेटिकली इग्नोरेंस के अंदर आ जाता है. सो वी आर नॉट सपोज टू स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू डिस्क्राइब द फ्लॉस इन द मटेरियल एजुकेशन. भौतिक जो एजुकेशन है उसके फ्लॉस को अधिक डिस्क्रिप्शन करने में यू आर नॉट गोइंग टू गेट मच. रादर यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स. परम दृष्टो निवर्तते. लोअर टेस्ट खराब है, लोअर टेस्ट खराब है तो कभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा गारंटी नहीं है. छोड़ भी देगा तो बेचारा खाली पड़ा रहेगा, खाली बॉटल लेके घूमता रहेगा, उसके कुछ उसको हाथ में आएगा नहीं. बट इफ दैट इज अ परम दृष्ट, उसको अगर हायर टेस्ट होता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा. यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दैट, ऑटोमेटिकली इट गोज अवे. सो दैट इज द यू नो इजियर अप्रोच.
या इट इज वेरी मच क्लियर. और फिर मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि इसमें obviously after hearing they'll talk to their parents. So but what steps parents are going to take, I mean wo to unke upar abhi knowledge hone ke baad fir wo kya step lete, it is up to them. But then the influence of material world and material education is so much ki as you said ki gurukul education ko totally samapti kiya ya they consider it of no value.
Yeah.
Yeah, maybe of value, theek hai, they respect, but then don't want to implement. Aisa hai.
Yeah.
Respect, but achche se karna.
They consider ki roti, kapda, makan, usko milega nahi, gurukul ke madhyam se. They think like this.
Correct. वो सुनने के लिए अच्छा है लेकिन अमल करने के लिए मुश्किल है या नामुमकिन ना है, ये वाली फीलिंग है.
क्योंकि उनके पास कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जाम्पल नहीं है कि ये मुमकिन है, ये संभव है. ऐसा उन्होंने वो कन्विंसिंग पावर ही चला गया उनका, वो इतनी हद से कंडीशन या बद्ध हो गए हैं कि उनको बताया गया कि तू गधा है, तू गधा है. बचपन से लेकर बड़े हुए थे उसको यही बताया गया कि तू गधा है, तो वो खुद अभी ऐसा मानना शुरू कर दिया कि मैं गधा हूं. लेकिन उसको अभी तक उसको सही चीज बताने वाला कोई था ही नहीं. सो इट इज दैट इज अवर प्रोपेगेंडा, दैट इज अवर यू नो वन ऑफ द अवर सर्विसेज टू द सोसाइटी दैट वी वांट टू ब्रिंग दिस विद्या बैक इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और भक्तों के बीच में. आई मीन इस प्रकार से एटलीस्ट डिवोटी कम्युनिटीज के अंदर इस प्रकार का एजुकेशन को सपोर्ट फैलावा किया जा सकता है एंड दैट विल हेल्प देयर चिल्ड्रन एंड फर्दर दे कैन क्रिएट अ गुड एग्जांपल. और इस तरह से यही तो बनता है ना, पहले छोटे लेवल से होता है, फिर बड़े लेवल पे होता है, फिर धीरे 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 यू नो वो एजुकेशन प्राप्त होता है. लाइक वी हैड अवर डिवोटी लॉन्ग बैक 6-8 महीने पहले बलराम वल्लभ प्रभु, ही वॉज डिस्कस कर रहे थे इस विषय में कि स्कूल के साथ साथ हम उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देना चाहते हैं. और आध्यात्मिक शिक्षा जो पढ़ते जाएंगे तो देन द आउटकम जो आएगा, आउटकम क्या आएगा कि लोग देखेंगे, एक एग्जांपल क्रिएट होगा कि दे आर मोर हैप्पी देन नॉर्मल स्टूडेंट्स, देन दे विल बी इंटरेस्टेड, दे विल बी अट्रैक्टेड और फिर धीरे 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 इस चीज को वो एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे. राइट, इज दैट बलराम वल्लभ प्रभु इज हियर.
वो तो पता नहीं, पर उनके स्कूल का ये तो रूल मुझे पता है कि नरसिंह आरती डेली गाई जाती है, जो और किसी स्कूल में गाई जाती है कि नहीं पता नहीं.
हरे कृष्ण प्रभु जी.
हाँ, छे बलराम वल्लभ प्रभु
ना आया नहीं, मंदिर है छे.
अच्छा अच्छा, तो आई मीन वी हैड डिस्कशन ऑन दैट यू नो, पास्ट में एक बार ऐसा डिस्कशन हुआ था हमारा. So this is the understanding. ये हमारी जिम्मेदारी है. This is our responsibility. We give children, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए.
हरे कृष्णा.
Yes, sir.
तो वो दूसरा एक आपसे एक क्वेश्चन है कि this मतलब ये भी एक रीजन है ना, जैसे आप बता रहे थे कि मतलब सबको नौकरी ही करवाना है, अपने संतान को तो नौकरी बनवाना है. राइट, जैसे वेणु माधव प्रभु विवेक बिंद्रा कहते हैं राइट, why to सर्व, हमें नौकरी क्यों, नौकर क्यों बनना है. राइट, वी कैन हैव अवर ओन इंडिविजुअल, वी कैन स्टार्ट समथिंग ऑन अवर ओन एंड वी कैन सर्व द सोसाइटी इन दैट वे ऑल्सो, दैट इज वन एस्पेक्ट. और सेकंड एस्पेक्ट प्रभु ये भी है कि जैसे मैं यहाँ जहां तक जानता हूँ बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे वो लोग ये देखते नहीं है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा सिर्फ फर्स्ट इंटरव्यू जब मेरा था तब उन्होंने सिर्फ वो सर्टिफिकेट वगैरह देखा था, उसके बाद उन्होंने कभी कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट कुछ देखा ही नहीं है. राइट, दे जस्ट सी कि मतलब व्यक्ति में कितना कैलिबर है, वो उसको जो फील्ड में वो इंटरव्यू दे रहा है उसमें वही इम्पोर्टेंट है. तो ये दो एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट नहीं है प्रभु.
यस, एंड जाता नहीं, मेरा मित्र था, मैं स्कूल का एक फ्रेंड था, वो स्कूल का जो फ्रेंड है वो उसने स्टडी किया था पता नहीं कौन से कोई इलेक्ट्रिकल का पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिकल का कोई ऐसा कुछ पढ़ा था किसी कॉलेज में, उसने पास किया था. और वो काम क्या करता था, धीरू भाई अंबानी के जो पत्नी है उनकी वेबसाइट बनाता था उनके लिए, और उनके पास जाकर उनका इंटरव्यू लेता, उनकी वेबसाइट बनाता था. तो एंड ही वाज अ प्रोग्रामर, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया. अभी वो उसको फिर इंटरनेशनल सुपरवाइजर के रूप में सब जगह देश विदेश में भेजा जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन के साथ, ये सब यू नो प्रोग्रामर हो गया वो .NET. सो लाइक दिस देयर सो मेनी एग्जांपल. हमारा ये इस्कॉन में भी हमारे बहुत सारे डिवोटी ऐसे ये पढ़े कुछ और यू नो और करते कुछ और यू नो दे आर डूइंग समथिंग एल्स. सो एनीवे सो यू आर राइट ऑन दैट कि मटेरियल एजुकेशन इज जस्ट अ टाइम पास एक्टिविटी, और वो भी आपको सिखाने के 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं, उसमें से सिखाने वाली वस्तु को 2 साल में पढ़ाई जा सकती है, इतना ही होता है उनका सिलेबस पूरा, कि जो सिखाया जाए जो मेन इम्पोर्टेंट होता है सिखाने का वो 2 साल में पढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी के 10 साल करे क्या, तो इसलिए वो फिर टाइम पास एक्टिविटीज देते रहते हैं और 12 साल निकलवा देते हैं और उनका एजुकेशन बोला जाता है तो 12 पास है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी हैव सीन मोस्टली, एंड दैट इज अ क्रूशियल पीरियड ऑफ दैट चिल्ड्रन. बच्चों का सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, वही टाइम पास में चला जाता है. सो
और वही लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रह जाता है फिर.
या कुछ 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 आता ही नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियरों को भी कुछ नहीं आता है, दे आर डंबफाउंडेड. अहमदाबाद की बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे इन्वाइट किया था लेक्चर के लिए, लेक्चर शुरू करने के टाइम पे या बीच में कहीं पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सिंपल क्वेश्चन, हु आर यू, दे कुड नॉट आंसर. मैंने अलग अलग विद्यार्थियों को पूछा था, दे कुड नॉट आंसर. कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं मनुष्य हूँ, कोई बोलता है मैं गुजराती हूँ, कोई बोलता है मैं भारतीय हूँ, आई मीन ऑल डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, दे डोंट नो हु दे आर. दिस इज इंजीनियरिंग, वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ अहमदाबाद. So like this, this is the problem. This is avidya. Yes. So more questions. So it's almost 12, almost 1. So shall we stop? You can take another sloka, but this sloka will take another minute, another few minutes, 10. इसमें मेनी गुड थिंग्स. फिर सही ज्ञान क्या होता है, वो ज्ञान भगवद्गीता में आपने पढ़ा था ना कि ज्ञान की व्याख्या क्या है, अमानित्व, वो क्या था श्लोक में दूसरा था, क्या श्लोक है वो, इतर ज्ञानम प्रोक्तम अज्ञानम यदि तो अन्य था, क्या है वो 13वें अध्याय में, सेम राइट, अमानित्व अदम्बित्व.
ऐसे नहीं याद रहता है प्रभु जी.
ये हाँ प्रभु जी, उसमें जो 20 आइटम विद्या के भगवान ने बताए थे और उसके अलावा सब अविद्या है ऐसा करके बताया, अमानित्वम अदम्बित्वम शांतिरार्जवम लाइक दैट, इट्स अ बिग श्लोक, आई थिंक 4-5 श्लोकास आर टुगेदर.
यस, सो दीज आर ऑल श्लोकास व्हिच मेंशन विद्या. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस much. Maybe if you want, we can take 10, or we can stop now. I mean, it will take only few minutes. Anyway, we'll talk. Take it tomorrow. Anyway, kal bhi hamara we have this talk. So we are completing this module in month of July itself. Mostly, Balaram Jayanti ke pehle pehle we'll complete this. So devotees will have enough time before and after Janmashtami to study, and uske following months jo aayega, August to September, aapke sare exam khatam ho jayegi, all module 1 2 3 sab khatam, and then you will be Bhakti Shastri pass out mostly, fortunately. So we are,
if we pass
if you are, aap sab sab acche bhakt hai, you are all of you are very good devotee, so I have hope ke acche students hai, acha padhai karoge all of you, itne 25-30 bhakt hai abhi my batch mein, ye sare bhakt acche vidyarthi hai, good devotee.
Jo koi karna hota hai utna yaad nahi reh pata hai.
Yeah, I mean, there is नथिंग टू वरी अबाउट, थोड़ा प्रयास करोगे भगवान बुद्धि देते हैं हृदय से, तो नथिंग टू वरी, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओ इतना सारा पढ़ना है इतना सारा, नथिंग, आप थोड़ा प्रयास करके पढ़ना शुरू करोगे तो फिर भगवान आपको तुरंत सहायता करना